पर परमेश्वर की बाइबल में से यह जानते हुए कि यदि मेरे वचन असफल हुए उसके नहीं होंगे, तो मैं यशाया की किताब से एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। और मेरे पास यहां कुछ वचन लिखे हुए हैं और कुछ टिप्पणियां जिनका कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं जितना जल्दी संभव हो सके, और उसके बाद फिर से आज रात को सीधा बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं इस अवसर को लेना चाहता हूं जबकि हम यशाया 45 को निकाल रहे हैं। मैं इस सौभाग्य को लेना चाहता हूं ताकि सारे सेवकों को धन्यवाद दूं जिन्होंने इस सभा के लिए सहयोग किया है। भाई शोर्स मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। वे इस नगर में असेंबली ऑफ गॉड का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई ऑटले मेरे दूसरे बहुमूल्य मित्र जो जीसस नेम कलीसिया से हैं। भाई फुलर जो इंडिपेंडेंट से हैं, जो मेरे दूसरे बहुमूल्य मित्र हैं। केवल यही तीन व्यक्ति नहीं, ये तीन विशेष झुंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु दूसरे सेवक जिनके लिए मैंने सेवकाई की है, जिन्होंने पहले की सभाओं की और दूसरे अभियानों में सेवा की है, उन सब ने सहयोग दिया है और एक साथ आकर और लोगों का बाहर आना। मैं निश्चय ही भरोसा करता हूँ मेरे भाइयों कि आपके बहुत से लोग जो बीमार थे और आवश्यकता में थे, इस समय में सहायता पाई है। और मैं निश्चित हूँ कि मैं जितना मैं जानता था कि मैं कैसे करूं, मैंने यत्न किया है। और मैं निश्चित हूं कि पवित्र आत्मा जो भी कहा और किया गया है उसकी पुष्टि करेगा। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं यशाया 45 22वें से आरंभ करके मतलब 22 पद से, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा और कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। मैं जानता हूँ पवित्र वचन का पढ़ना ही काफी नहीं है, परंतु यह पर्याप्त है क्योंकि यह अनंत है, यह परमेश्वर का वचन है। और यदि मैं इस मूल पाठ को कहूं लगभग 20 या 30 मिनट के लिए, मैं यह कहना चाहता हूं यीशु की ओर देखना, यह वर्षों की पुकार रही है, तुम पृथ्वी की छोर से मेरी ओर देखो। मैं इसे बस थोड़ा सा घुमाना चाहता हूं, बस थोड़ा सा, और संसार के प्रत्येक तंत्र के छोर पर से विशेषकर मेरी ओर देखो, क्योंकि वह सदा स्वयं को संसार के तंत्र के छोर में वास्तव में स्वयं को प्रकट करता है जब यह अंत पर आता है। मेरी ओर देखो, तुम सारे संसार के छोरों में, ऐसा कह सकता हूँ। वचन कहता है वे छोर, जगत के छोर, वे छोर बहुवचन में है, संसार के छोर। बहुत से कहते हैं हमने बहुत वर्षों से इसे सुना है, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। खैर, ये सत्य बात है, परंतु बात ये है, प्रश्न ये है, आप क्या देखते हैं जब आप देखते हैं? आप बहुत लंबे समय से यह पूछते आ रहे हैं, मेरी ओर देखो। वहाँ लोग कहते हैं देखो, यदि वे देखो शब्द का उल्लेख करते हैं जिसका अर्थ है ध्यान दो, वहाँ देखो या उस पर दृष्टि डालो और देख लो। और अब परमेश्वर यहाँ कह रहा है मेरी ओर देखो, मैं परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। और मैं सोचता हूँ कि इस समय में जिसमें हम रह रहे हैं, हम किसकी ओर देख रहे हैं जो परमेश्वर से अधिक मजबूत होगा, और परमेश्वर वचन है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन की ओर देखें आपके उत्तर के लिए। देखो, बाइबल में आज के दिन का उत्तर है, इसके पास दूसरे दिनों का भी उत्तर था, इसके पास सदा का है, क्योंकि यह मसीह है जो कल आज और सर्वदा एक सा है। बाइबल के पास उत्तर है क्योंकि बाइबल यीशु मसीह का प्रकाशन है, संसार की उत्पत्ति से लेकर प्रकट हुआ है। वो नबियों के रूप में प्रकट किया जाता रहा है, वह राजाओं के रूप में प्रकट किया गया, वो व्यवस्था देने वालों के रूप में प्रकट किया जाता रहा, क्योंकि यही तो वो है, राजा, नबी, व्यवस्था का देने वाला और परमेश्वर। अब उसने कहा मेरी ओर देखो, और आप कहते हैं मैंने ऐसा किया है। ये निर्भर करता है कि आप किसे देखते हैं। निश्चित करें आप क्या देखते हैं, कहां पर, और आप उसे किस लिए देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं उसकी ओर देखने में आपका उद्देश्य क्या है, यह निर्भर करता है कि आप जिसके लिए देख रहे हैं वही आप पाते हैं। अक्सर लोग सभा में आते हैं एक धार्मिक एकत्र होने के लिए। उनमें से कुछ लोगों की बड़ी भीड़ को ढूंढते हैं कि उनके साथ बैठें। कुछ मैं यह कहना पसंद नहीं करता परंतु यह सत्य है, कुछ कलीसिया में अपने वस्त्रों को दिखाने जाते हैं जो उन्होंने पहन रखे हैं। कुछ कलीसिया में जाते हैं क्योंकि वे कहते हैं यह नगर का सबसे बड़ा आराधनालय है या इसका बहुत नाम है, विशेष वर्ग के लोग इस आराधनालय में जाते हैं। तो फिर यह गलत है, समझे? आप सही चीज की ओर नहीं देख रहे हैं जिसके लिए आराधनालय को स्थापित किया गया है। परमेश्वर ने कहा मेरी ओर देखो। बहुत से लोग सभाओं में जाते हैं और बस दिखावा करने के लिए, और कभी कभी लोग सभाओं में जाते हैं, इसे कहना बहुत बुरा लगता है और हम इस बात पर अधिक समय ले सकते हैं, परंतु इससे पहले वे आराधनालय जाएं, वे पहले से ही अपने मन को तैयार कर लेते हैं। यदि ऐसी कोई बात कही गई या ऐसा कुछ जो उनके विचार के विरुद्ध होता है, वे सीधा खड़े होकर बाहर निकल जाते हैं। वो बस ऐसे ही खड़े नहीं होंगे क्योंकि उनके पास अपने विचार हैं कि ये क्या होना चाहिए। यही कारण है कि यीशु को नहीं समझा गया था जब वो धरती पर आया। यदि वे केवल परमेश्वर के वचन में देखते बजाय उनके दिनों के रीति रिवाजों के देखने के, तो वे जान जाते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि बाइबल साफ साफ उसके पूरे आगमन की घोषणा कर रही थी और वो वचन के पूर्ण प्रकाशन में आया, और प्रत्येक पीढ़ी उसे पूर्ण प्रकाशन में प्रकट करती है जो उस समय के लिए ठहराया गया है। इस पीढ़ी को यीशु मसीह को प्रकट करना ही है, यही उसका प्रकाशन है जिसकी प्रतिज्ञा वचन में की गई है, जो अवश्य ही इस पीढ़ी में प्रकट होना है। यदि कलीसियाएं इसे स्वीकार नहीं करेगी, कोई तो उठेगा और इसे करेगा, क्योंकि यूहन्ना ने कहा परमेश्वर योग्य है कि अब्राहम के लिए इन पत्थरों से संतान को उत्पन्न करे। अपने आप में भीतर ही भीतर ना सोचो हमारे पास अब्राहम पिता है, क्योंकि परमेश्वर योग्य है इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा परमेश्वर पूरी रीति से सक्षम है कि जो उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करे। हमारे पिता अब्राहम ने यह अनुभव किया, आशा के सामने उसने आशा में विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास में से होते हुए डगमगाया नहीं, परंतु बलवंत था, परमेश्वर को महिमा दे रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। उसने हमसे आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा की है, उसने हमसे प्रतिज्ञा की है और आज हमारी प्रतिज्ञा उतनी ही निश्चित है जिसे प्रकट होना है जैसे यह अब्राहम पर थी, क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं। मसीह में मरने के द्वारा हम अब्राहम के बीज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके संग वारिस हैं। बहुत से लोग आए, उनके विचार को बनाते हैं, पूर्ण सुसमाचार की सभा में बैठते हैं या किसी दूसरी सभा में, और वे बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि कुछ तो ऐसा कहा जाए जिससे वे सहमत ना हो, फिर उठकर और वहाँ से निकल गए। वे कुछ और सुनने के लिए नहीं रुकते हैं, वे देखने के लिए नहीं रुकते यदि वहाँ था और इसका सच क्या है। अब हम कहते हैं क्या यह आत्मा है, यह कहाँ से आया? ऐसा हमेशा से हुआ है, यह उत्पत्ति से आया, यह सारे वचनों में है। बहुत सी बार जब एक समय पौलुस बोल रहा था, मेरा मतलब लोगों के एक झुंड से, क्यों? उन्होंने उसे तब तक ध्यान से सुना जब तक वो व्यवस्था में बना हुआ था, परंतु जब उसने प्रकाशन के विषय में बताना आरंभ किया, स्वर्गीय दर्शन, तुरंत ही इसने सभा के लोगों को बदल दिया, वे उठकर चिल्लाने लगे। यदि वे बस सुनते कि वो मनुष्य क्या कह रहा है, वो वचन के द्वारा परमेश्वर के सत्य को प्रकट कर रहा था। कुछ समय पहले इस संयुक्त राज्य के बड़े नगर में मुझे बेदारी के लिए निमंत्रण दिया गया। वहाँ बहुत थोड़े लोग बाहर निकल गए, शायद संपूर्ण बेदारी में जितने आज रात यहाँ इस इमारत में हैं, इससे अधिक लोग नहीं थे, और मैंने सोचा तो मैं कुछ नाश्ता दूंगा, मुफ्त में नाश्ता दूंगा, और मैंने अपने प्रेम दान को लिया कि कुछ वहाँ उस शहर के सार्वदर्शिक विश्वासियों को मुफ्त का नाश्ता दूं, और उन्हें कहा कि आओ मैं उनसे बात करना चाहता हूं और उन्हें अपने वहां पर होने का उद्देश्य बताना चाहता हूं, ताकि शहर की सहायता करूं, बीमारों की सहायता करूं, उनकी सहायता करूं, हर एक कलीसिया की। उस समय जब डॉक्टर ली वेल उस अभियान में मेरे बोलने वाले वक्ता थे, उन्होंने उन छोटागणों से मेरा परिचय करवाया। नाश्ते के बाद मैंने इस विषय को लिया, मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति अब आज्ञाकारी नहीं था। थोड़ी ही देर में मैंने ध्यान दिया कि एक सेवक ने अपने घड़ी की ओर देखा, वहाँ पहुँच कर और अपने साथी को सिर हिलाकर इशारा किया, उठकर और बाहर चले गए। इसके पहले कि मैं 6 या 8 शब्द बोलता, लगभग उस सेवकगण के झुंड में से एक तिहाई बाहर चले गए। इसके पहले कि मैं 5 मिनट बोलूं कि पौलुस ने क्या कहा कि वो स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवआज्ञाकारी न था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए बुलाया था। उन्होंने ठीक तब ही देख लिया कि मैं अपना विचार का आधार बनाने जा रहा हूँ, तो वहाँ एक तिहाई झुंड भी ना बचा। अब यहाँ तक ये मसीही सोच विचार भी नहीं दे रहा है एक मनुष्य के समान जो यीशु मसीह के नाम का कहलाए। मैं ये आदर पूर्वक कहता हूँ, परंतु मैं इसे कहता हूँ ताकि यह हृदय में चला जाए, जो मुझे समझ और बेहतर सहभागिता अफ्रीका के ओझा लोगों के झुंड से जो मिली थी उसकी तुलना में जो मुझे उस सुबह सेवकों के झुंड में मिली। वे परमेश्वर के वचन पर अधिक ध्यान को देते हैं और प्रश्न को पूछते हैं, क्योंकि ताकि मैं उन्हें आशा दे सकूं जो मेरे भीतर रखी हुई है, उस अनंत जीवन की आशा के लिए। इन सेवक गणों के पास इसके लिए बिल्कुल ही समय नहीं था। जल्द ही, जैसे ही जल्दी आप कुछ तो कहेंगे, वे बाहर चले जाते हैं, और ये इसी प्रकार से है। उन्होंने अपना विचार बना लिया था, वे बस उतनी देर ही रुकते हैं, और यही सब वे जानना चाहते हैं। यदि इसका एक भी शब्द उनके छोटी सी बात के साथ सहमत नहीं होती है जिसे वे विश्वास करते हैं, वे रुक नहीं सकते हैं और न ही उसे पूरा सुनते हैं। यही कारण है वे यीशु मसीह का विश्वास नहीं कर सके उसके पहले आगमन पर। यही कारण है वे उसके दूसरे में भी उससे चूक जाएंगे। वे उसको हर बार चूके हैं, वे हमेशा ही चूकते हैं। और उसने स्वयं को मूसा में प्रकट किया, स्वयं को नूह में प्रकट किया, स्वयं को एलिया में प्रकट किया, सारे भविष्यवक्ताओं में, हर बार वे इससे चूक गए। यीशु ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों में से किसने भविष्यवक्ताओं को कब्र में नहीं डाला और वे अब उन कब्रों को सजा रहे हैं। यह सत्य है, यह हमेशा से सत्य रहा है और आज भी यह सत्य है। और अब भी इस सब के मध्य में हमें देखने की आज्ञा दी, संसार के सारे छोड़ों से उसे देखो। कभी कभी वे भीतर आते हैं, एक मनुष्य आपको जांचेगा किस प्रकार के कपड़ों को आपने पहने हैं। यदि आप सेवकों के कपड़े पहने हुए नहीं हैं और इत्यादि, तो ये बाहर हो जाते हैं, वे आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। कभी कभी वे ये देखना चाहते हैं आपकी शिक्षा किस प्रकार की है, यदि आप अपने शब्द ठीक ठीक बोलते हैं, यदि आप ठीक तरह से खड़े हैं, आप अपनी संज्ञा या सर्वनाम का कैसे उपयोग करते हैं। खुले रूप से कहूं तो मैं नहीं जानता संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है, मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए ये मेरे समझ से बाहर है और मैं बस नहीं जानता। मैं संज्ञा सर्वनाम के बीच अंतर नहीं बता सकता। जब मैं स्कूल में था तब पढ़ा था, परंतु मैं यह बहुत पहले भूल गया। मैं बस एक बात जानता हूँ और वो है यीशु मसीह को उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, यही वो तब मैं जानता हूँ कि उसके विषय में किस तरह से कहना है। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम मैं कुछ नहीं जानता। और मैं सोचता हूँ यही है जिसके लिए हम मिलकर इस प्रकार की सभा में आए, कि उसे जाने, न कि संज्ञा और सर्वनाम को जानने के लिए, परंतु उसे जानने के लिए यीशु मसीह को उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में। अब कुछ लोग जब वे यीशु की ओर देखते हैं, वे उसकी ओर देखते हैं और उसे निहारते हैं, देखते हैं और उसकी ओर देखते हैं, और फिर वे उसकी ओर निहारते हैं और उसमें केवल कलीसिया के संस्थापक को देखते हैं, या एक कलीसिया के आयोजक को, या हो सकता है एक कलीसिया के मत विचार के लिए। यही है जो बहुत से लोग यीशु की ओर देखते हैं कि निहारे। वो बस एक नया मतसार है जो कि एक पुरानी शिक्षा में जोड़ा गया है। अब बहुत से लोग देखते और उसे इस प्रकार से निहारते हैं। कुछ उसकी ओर निहारते हैं और एक काल्पनिक किनाई जो सांता क्लॉज है, या उनमें से कुछ लोग एक ऐतिहासिक कार्य करने वाले किनाई उसकी ओर देखते हैं जो परमेश्वर ने वर्षों पहले किया है। उनमें से कुछ उसे अब भी चरनी के बालक के समान देखते हैं। परंतु प्रश्न ये है, जब आप उसकी ओर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या आप उसे त्रिएकता में का दूसरा व्यक्ति देखते हैं, या आप त्रिएकता को देखते हैं, तीन जो एक में है? जब आप उसे वचन में होकर देखते, केवल तब ही आप उसे देखेंगे। केवल यही मार्ग है कि आप उसे जानते हैं, क्योंकि वो वचन है। वो स्वयं को प्रकट करेगा। निर्भर करता है कि आप किसके लिए देख रहे हैं। यदि आप उसकी ओर देखते हैं कि विवाद करे, तो फिर आप गलत देख रहे हैं। उसने विवाद नहीं किया, ये उससे उसके लिए नहीं मिलता था कि विवाद करे। याद रखें, आप उसे वैसा ही देखते हैं जैसा आप उसे उसके वचन में होकर देखते हैं और उसे पहचानते हैं। अब आप उसे नहीं देख सकते हैं जब तक आपकी आँखें सच्चाई के लिए नहीं खुलती हैं। दो व्यक्ति एक ही वचन को देख सकते हैं और असहमत होते हैं, उनमें से एक को सही होना है और दूसरे को गलत। कभी कभी कुछ बातें हमारे आसपास घटित होती हैं, जो कि हम समझ नहीं सकते हैं। दूसरे कह रहे होते हैं कि वे उन चीजों को देख रहे हैं, दूसरे इस विषय में कुछ नहीं देख पाते। वहाँ नीचे दोतान की ओर देखें, उस दिन जब एलिया अरामी सेना के द्वारा घेर लिया गया था और उसका विश्वास योग्य सेवक गेहजी, जो उसके संग रहा, उस पर आश्रित रहा, उसके लिए पकाया और उसके वस्त्रों को साफ रखा, उसके हाथों पर पानी डालता, ठीक उसके साथ था, दिन रात उसे प्रचार करते और सिखाते हुए सुनता था। और उस सुबह जब वो उठा, उसने बाहर की ओर देखा और उसने देखा कि अरामी सेना चारों ओर थी। उसने कहा, मेरे पिता, हाय, अपने विरोधियों को देखो, हमारे चारों ओर सारी आरामी सेना। आप देखते हैं, एलिया जब वो उठा और देखा, उसने कुछ तो ऐसा देखा जो गेहजी नहीं देख पाया, और इसलिए उसने प्रार्थना की, परमेश्वर इस नौजवान पुरुष की आंख को खोल दे। अब उसकी आंखें पूरी पूरी खुली हुई थी, परंतु उसने कहा, इसकी आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। जब उसकी आंखें आत्मिक रूप से खुल गई, तो पूरा पहाड़ अग्नि में रथों से भरा हुआ था और स्वर्गदूत नबी के चारों ओर थे। देखो, जब उसकी आंखें खुली तो यह भिन्न बात थी। अब लोग शब्द दर शब्द वचन की ओर देखते हैं, और यही वो तरीका है, आपको इसकी ओर देखना चाहिए, परंतु यह स्वयं को शब्द दर शब्द और आत्मिक रूप से प्रकट करता है। आत्मा प्रतिज्ञा में वचन को जीवित बनाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक बीज है जिसको आत्मा अपना जीवन देता है। ये तेल से अभिषेक करता है, ये इसे बढ़ाता है, जैसे बारिश बीज को देती है जो जमीन में गड़ा हुआ है, यह जीवन अंकुरित करता है। और जब आप यीशु की ओर देखते हैं, उस घड़ी के प्रतिज्ञा किए हुए वचन की नाई, तब यह आप पर प्रकट होगा। यदि आप इसकी ओर देखते हैं, आप देखेंगे कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है, वही मसीह। परमेश्वर के वचन का भाग हर पीढ़ी के लिए ठहराया गया, वहाँ उत्पत्ति से लेकर, परमेश्वर हमेशा किसी को तो भेजता है। अक्सर पुरोहितवाद इसे इतना मिश्रित कर देता है, जब तक यह रीति रिवाज और इत्यादि नहीं हो जाता, जैसा कि यह यीशु के आगमन पर था, और फिर परमेश्वर साथ ही नबी को भेजता है। प्रभु का वचन नबी के पास आता है, वो इसे प्रकट करता है। मरते तक पत्थरवाह किया गया, बाहर निकाला गया, बाहर खदेड़ा गया, और फिर उसके जाने के थोड़ी देर बाद वे उसकी कब्र बनाते और कहते, वो महान पुरुष था, वो वहाँ जो पहले था, वे उसके छाया में रहते थे, और जो आज का वचन है उसको अस्वीकार करते हैं। यह बस उस एक मनुष्य के समान है, वो हमेशा इसके बारे में बात करता है कि परमेश्वर कितना महान है और उसने क्या क्या किया है, कैसे चीजों को वो करने जा रहा है, और जो चीजें जो ठीक अभी कर रहा है उन्हें नहीं देखता है, समझे। वो उसे इतिहास में देखता है, भविष्यवाणी में देखता है, परंतु यह भूल जाता है कि वो वही बात को ठीक इस समय पर कर रहा है जो उसने तब किया था, यद्यपि यही उस मनुष्य में है। हम देखते हैं कि चेले एक बार उसके बाद में, तो ये पहले ईस्टर की सुबह थी, क्या ही वो सुबह थी, यीशु मृतकों में से जी उठा, फूलों के मध्य चल रहा था, और दो मित्र क्लियोपास और उसका एक मित्र अमाउस की राह पर जा रहे थे, और वे चलते चलते बात कर रहे थे, अपने हृदय में दुखी थे, और झाड़ी में से एक मनुष्य निकल कर आया और उनके संग चल पड़ा, बाकी के दिन में उनसे मसीह के विषय में बातें कर रहा था। और उस सांझ को उन्होंने उससे पूछा, उसके व्यवहार से लगा वह उनसे आगे जाना चाहता है, परंतु उन्होंने उससे आग्रह किया कि भीतर आए, वह आ गया, और जब वो आया उसने वहाँ कुछ तो ऐसा किया जैसे उसने इससे पहले किया था, अपने क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान से पहले, उसके क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने उसे वैसा ही करते देखा। उन्होंने इसे पहचान लिया कि वो वही था, हालांकि सारे दिन उसके संग रहे और कभी नहीं पहचान पाए कि वो कौन था। आज यह संभव है, वो भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य मसीह के साथ चलता है, उसके वचन को पढ़ता है, और फिर भी नहीं पहचानता कि यही वो घड़ी है जब बाइबल की निश्चित बात घटित होनी चाहिए। यही घड़ी है जिसमें हम रह रहे हैं, समय निकट है जब ये चीजें अवश्य ही होनी है, यह लिखा है, और इसे इसी प्रकार अवश्य ही पूरा होना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। जी हाँ, हमारी आंखें वचन को देखने के लिए अवश्य ही खुली होनी चाहिए। अब आप वचन की ओर देख सकते हैं, फरीसियों ने उस वचन को निकाल लिया था, बिल्कुल ठीक जिस प्रकार से मसीहा आने वाला था, उन्होंने विश्वास किया कि वे सही थे और वो यहाँ जन्मा था और उसके मध्य में चला फिरा और उन्होंने उसे दोषी ठहराया। जब उसने उन्हें बताया तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढो क्योंकि उसमें तुम सोचते हो तुम्हारे पास अनंत जीवन है और वे वही है जो मेरी गवाही देते हैं। पवित्र वचन में खोजो, उन्होंने कहा हम मूसा के चेले हैं। उसने कहा यदि तुम मूसा के चेले होते तो तुम मुझे जानते क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है और उसने किया। मूसा ने कहा प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मूसा एक भविष्यवक्ता उठाकर खड़ा करेगा, एक व्यवस्था को देने वाला और आदि आदि और एक नबी और लोग उसको सुनेंगे। देखो यदि उन्होंने मूसा के लेख को समझा होता तो वे मुझे भी जानते। उन्होंने सोचा वे मूसा के लेख को जानते हैं परंतु आप देखिए उन्होंने इसे नहीं जाना। देखिए वे उसी सच्चाई के प्रति अंधे हो गए थे। इसलिए उसके द्वारा थोड़े से वचन इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उछल पड़े और कहा इस मनुष्य में शैतान है, हमें सिखाने आया है। ये कौन से विद्यालय से आया है, हमारे पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हम सोचते हैं कि उसके पास कौन सी संगति का परिचय पत्र रखता है या कुछ तो इसी लीक पर प्रश्न था। परंतु वे देखने में चूक गए थे और उसी परमेश्वर को देखने के लिए जिसने वचन की प्रतिज्ञा दी जो उस व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा ठीक वहाँ पर प्रमाणित हो रहा था क्योंकि वो उस घड़ी का उजाला था, वह लोगों के लिए उजाला था ताकि इसमें चले। और केवल परमेश्वर का वचन ही उजाले को उत्पन्न करता है, केवल परमेश्वर का वचन ही उजाले को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन सूर्य की चमक देता है, परमेश्वर का वचन पृथ्वी को उत्पन्न करता है, परमेश्वर का वचन हवा को उत्पन्न करता है। हर एक चीज परमेश्वर का वचन है जो प्रकट बना, हर एक चीज जो इसकी वास्तविकता में है। जब वो यहाँ पर था उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ और कोई नहीं है। किसी ने देखा, आइए कुछ को ले जिन्होंने देखा। यशाया एक बार एक नवयुवक भविष्यवक्ता, यहाँ पिछली बार फिनिक्स में मैंने उसके विषय में व्यापारियों से बात की, मैं विश्वास करता हूँ यही था कैसे वो राजा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता था उजिया। और हमने पाया कि उजिया फूल गया था और उसे कोढ़ का रोग हो गया था। तब यशाया को वहाँ मंदिर में प्रार्थना के लिए जाना था और कहना था और उसे पापी होना स्वीकार करना था। और उसने करूबों को आगे आते देखा अपने पंखों के साथ अपने पवित्र चेहरों को और पैरों को ढांपे हुए और पंखों के साथ उड़ रहे थे और पुकार रहे थे प्रभु परमेश्वर पवित्र है। जब यशाया ने यीशु मसीह की झलक को देखा, यहाँ है जो उसने देखा। उसने कभी भी किसी साधारण से धर्मी व्यक्ति को नहीं देखा, उसने कभी किसी दर्शन शास्त्री को नहीं देखा। जैसे कि आज हमारे अधिकांश प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, मैं सोचता हूँ उनमें से 68 मतलब 86% हैं, एक सर्वेक्षण में विश्वास करने से इंकार करते हैं। वे यीशु मसीह को कुआरी से जन्म का इंकार करते हैं, हमारे प्रोटेस्टेंट प्रचारक। यह ठीक बात है, यह आंकड़ों से हटकर है। ठीक, वे कुआरी से जन्म का इंकार करते हैं, वे इसे विश्वास नहीं करते कि ये वास्तव में कुआरी थी। इसलिए तब यशाया ने कुछ इस प्रकार से नहीं देखा, उनमें से कुछ ने उन्होंने कहा वह एक भला मनुष्य था। उनमें से कुछ जैसे आज के हमारे संप्रदाय हैं, कहा वो एक भला मनुष्य है, निश्चय ही उसमें कोई दोष नहीं। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि उसके वचन आज स्थापित या विश्वास नहीं किए जा सकते हैं। तो कोई भरोसा और कोई विश्वास जो परमेश्वर के वचन से बाहर होता है उसे छोड़ दो। यीशु ने कहा हर एक मनुष्य का वचन असफल हो जाएगा परंतु मेरा नहीं होगा। आकाश और धरती टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। इसलिए कोई मतसार या कोई भी चीज जो इस परमेश्वर के वचन पर नहीं बना, परमेश्वर के सारे वचन। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा परंतु हर वचन से, न कि एक वचन यहाँ दूसरा वचन वहाँ और छोटी सी बात यहाँ और वहाँ और इसे एक साथ रखते हैं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मनुष्य बाइबल का प्रत्येक वचन लेगा एक साथ रखते हुए, यह तो पहले ही मिला हुआ है, बस इसे पढ़ें और इसका विश्वास करें, इस पर कार्य करें, परमेश्वर इसका आदर करेगा। अब हम ये पाते हैं कि यशाया जब उसने देखा, यशाया तुम क्या देखते हो, उसने देखा एक को बुलाया गया था, युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, शक्तिमान परमेश्वर, सनातन का पिता, यही है जो उसने देखा। यदि मैं दूसरे व्यक्ति के लिए बताता हूँ, दानियल एक बार तुम्हें सौभाग्य मिला कि उसे देखो, एक महान भविष्यवक्ता, तुमने क्या देखा? उसने कहा, मैंने एक पत्थर को देखा जो पहाड़ से खोदा गया बिना हाथों के और ये संसार के राज्यों पर लुढ़का और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये गर्मी में गेहूं की भूसी के निकालने के समान उड़ गया और पत्थर एक बड़े पहाड़ में बदल गया जिसने सारी धरती को ढांप लिया। यही है जो उसने इसके विषय में कहा। इसीलिए वो किसी दिन वो संसार पर राज्य करेगा। लोग आज संसार के शासक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर राष्ट्र अपनी भाषा को चाहता है, उनके विचार, हर संप्रदाय अपने झुंड को दूसरे के ऊपर चाहता है, परंतु एक आ रहा है और वह यीशु मसीह होगा। वह विश्व का शासक करने वाला है जो स्वयं परमेश्वर से कम नहीं। एक दिन नबुकदनेज़र ने एक बुरे काम को किया था। उसने 3 विश्वासी बच्चों को आग की भट्टी में फेंका और जब उसने देखने के लिए दरवाजे को खोला कि उनका वहाँ क्या हो रहा था, उसने चौथे पुरुष को भट्टी के अंदर देखा। और तुमने क्या देखा? जब तुमने देखा नबुकदनेज़र, उसने कहा, वह परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ा। उसने यही देखा जब उसने अपने किए गए अपराध की ओर देखा। वहाँ पर एक था जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई दिया था। एक दिन यहेजकेल ने दृष्टि डाली, उसने कहा, मैंने उसे भी देखा और एक चक्र के मध्य में एक चक्र को देखा जो कि आकाश के मध्य में घूम रहा था। यहेजकेल को वो इसी प्रकार से दिखाई दिया। यूहन्ना भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा, वही वो एक था जिसने यीशु का परिचय करवाया। यीशु ने कहा, वो था किसी भी मनुष्य से बड़ा जो जन्मा था। क्या आपने कभी सोचा वो क्यों बड़ा था? बाकी सारे लोगों ने उसके विषय में बोला। प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के पास आता है, बाइबल ऐसा ही बताता है। और उन सारे दूसरे भविष्यवक्ताओं को ये उनके दर्शन में आया, परंतु जब वचन यूहन्ना के पास आया तो वो देह में था। यीशु वचन था, वो वचन है, वो हमेशा से ही वचन था, परंतु यहाँ वो परमेश्वर की परिपूर्णता में आया, देहधारी बना और हमारे मध्य वास किया। जब वो उसके पास पानी में चलकर आया तो भविष्यवक्ता था, और यदि वचन देहधारी हुआ तो उसे नबी के पास ही आना था। वचन वो जो कुछ भी है उसे भविष्यवक्ता के पास आना है, क्योंकि वो भविष्यवक्ता ही एक होता है जिसके पास वचन आता है, और यूहन्ना उस दिन का भविष्यवक्ता था। और जब वचन उसके पास आया, पानी में चलकर गया और कहा, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, और यूहन्ना ने कहा, मुझे आवश्यकता है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूँ, और तू क्यों मेरे पास आया? उसने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि इस प्रकार से हम सारी धार्मिकता को पूरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा यूहन्ना ने यह क्यों कहा? क्यों यूहन्ना यीशु से ऐसा कहेगा? क्यों? क्योंकि ये उनमें का बन रहा था। वे वहाँ वो नबी और वचन था, और वचन नबी के पास आना था। अब यह उनमें से बनना था ताकि सारी धार्मिकता को अवश्य ही पूरा किया जा सके। क्या हुआ? तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना नबी होने के कारण वचन को जानता था। बलिदान को धोया जाना अवश्य था इससे पहले कि उसे उपस्थित किया जाए, और इसी कारण यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने दृष्टि डाली और उसने देखा, उसने कैसे जाना कि वो यीशु था? उसने एक पिंडुकी को देखा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे ये बताया गया, और जिसके ऊपर तू आत्मा को उतरते देखे और उस पर बना रहे, वही वो एक है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। नूह ने देखा। हम यहाँ पर ये पाते हैं, वहाँ एक और मनुष्य दिखाई पड़ा जिसका नाम नूह था। उसने दृष्टि की और देखा परमेश्वर का न्याय, न्याय परमेश्वर का न्याय, मतलब वचन के ठुकराने वाली उस दुष्ट पीढ़ी पर उंडेला जा रहा था। उसके दर्शन में जैसे कि नूह भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि जहाज को कैसे बनाया जाए, और जहाज को बनाने का निर्देशन दिया कि इसे किस तरह से बनाना अवश्य है। इसमें नूह कैसे कर सकता है जब तक यह दर्शन परमेश्वर का वचन नहीं होता है? जब उसने इस क्रोध को देखा और तैयारी के मार्ग को बना रहा था, हमेशा ही इसके पहले कि न्याय आता वहाँ तैयारी की गई। यह हमेशा ही परमेश्वर का वचन रहा है, और जब वो परमेश्वर के वचन को कुल मिलाकर बना रहा था इस बात की गवाही देते हुए कि उसका दर्शन सच्चा था, और उसने उसमें विश्वास किया, उपहास करने वालों ने उसका मजाक उड़ाया और आदि आदि। परंतु नूह ने आगे देख लिया था और परमेश्वर के न्याय को देख लिया था कि लोगों पर न्याय की मांग करता है, और उसने अपने घराने को बचाने के लिए एक जहाज का निर्माण किया। जब उसने देखा, उसने परमेश्वर के क्रोध को आते हुए देखा, और इस बात से बच निकलने के लिए उसने लोगों के लिए तैयारी की। इसी प्रकार योन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, उसने बचने के लिए तैयारी की। और ऐसे ही आज पवित्र आत्मा है यीशु के आगमन के आगे चलने वाला, जो निर्माण कर रहा है यीशु मसीह के देह की। हमारा इसमें बपतिस्मा हुआ है, न ही मतसार के द्वारा, न ही संप्रदाय के द्वारा या एक हाथ मिलाने के द्वारा, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारा यीशु मसीह के देह में बपतिस्मा हुआ। एक निर्माण जो न्यायों में स्थिर रहेगा, क्योंकि इसका न्याय पहले ही हो चुका। जब मैं लहू को देखता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। जी हाँ, नूह उसने देखा, और उसने देखा कि क्या आ रहा था। मूसा ने देखा, एक दिन उसने अग्नि के खंभे को देखा, उसने इसका ध्यान आकर्षित किया। ये महान धर्मज्ञानी, वो अपने सारे धर्मज्ञान के प्रशिक्षण के साथ भाग निकला था, और अपनी समझ के साथ उसकी माँ के द्वारा दी गई स्वयं वचन की कि कैसे उसे इज़राइल की संतान को छुड़ाना था। परंतु जब उसने अपने तरीके से यत्न किया, वो असफल हो गया। और हालांकि उसकी माँ ने इस पर उसे विस्तार से निर्देशन दिए थे कि क्या करना है और वो क्या करेगा, और परमेश्वर ने उसका किस लिए पालन पोषण किया था, इस सारे ज्ञान को जितना ये अच्छा हो सकता है, और ये अच्छा था, परंतु फिर भी इसे उत्तेजित करना था। यह तो केवल यांत्रिकी थी। यांत्रिकी वो नहीं जो वाहन को दौड़ाती है, यह तो गतिकी है, इसे दौड़ाती है। यांत्रिकी कलीसिया को नहीं चलाती, यह गतिकी होती है, वो पवित्र आत्मा जो इस वचन के अंदर जाता है। यह धर्म विद्यालय नहीं जो आपको सारा धर्म ज्ञान सिखाता है और यूनानी अनुवाद, परंतु ये उसमें पवित्र आत्मा की गतिकी होती है जो उसे प्रज्वलित करता है और इसे घटित करता है और इसे जीवित करता है, बिल्कुल ठीक जो इस घड़ी का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है। ना कि यांत्रिकी गतिकी, ये यांत्रिकी और गतिकी को लेता है। वचन और आत्मा, ये वो एक है जो जीवन को देते हैं। जो परमेश्वर ने इस घड़ी के लिए प्रतिज्ञा की है, इसे घटित होने के लिए देखो। आपको उसकी ओर अवश्य ही देखना चाहिए, क्योंकि वो वचन है, और केवल एक ही जरिए से आप वचन को देख सकते हैं कि उसकी ओर देखें, उसकी ओर देखें, वो वचन है। और आज के दिन के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ वचन, इसे आज ही पूरा होना है। नूह का समय आज के दिन को पूरी नहीं कर सकेगा, यह तो केवल एक नमूना था। मूसा का समय और आदि आदि, परंतु ये वो दिन है जिसकी परमेश्वर ने इन बातों की प्रतिज्ञा की है, जिनका हम आनंद ले रहे हैं। ये बातें अब हम देख रहे हैं, जिस पर संसार हंस रहा है। पवित्र आत्मा की यह महान गतिशील सामर्थ, जो एक पापी का हृदय बदल सकती है, जो कि एक गुनगुने कलीसिया के सदस्य को ले सकता है और उसे एक गवाही देता है, जो कलीसिया को उत्तेजना में लेकर आएगा जहाँ से वो आया। यह गति की है जो उस वचन के अंदर है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, मैंने दो वर्ग के लोगों को पाया है। उनमें से एक मूल सिद्धांत वाले, स्थिति अनुसार वह जानता है कि वो मसीह में कहाँ है वचन के कारण, परंतु जो वो कर रहा है उसमें उसे विश्वास नहीं है, उसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। फिर मैं पेंटिकॉस्टल को पाता हूँ, उनमें से बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है, परंतु नहीं जानते कि वे कौन है। एक मनुष्य के समान जिसके पास बैंक में पैसे हैं और चेक को नहीं लिख सकता, और दूसरा एक चेक लिख सकता है और बैंक में पैसे नहीं है। यदि आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, यदि आप पेंटिकॉस्टल वाले को एहसास दिला सके कि वो कौन है और वास्तविकता में वापस आए, परमेश्वर का पूर्ण वचन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ यह नए पेंटिकॉस्टल की बेदारी से संसार में आग को प्रज्वलित कर देगा। भाइयों बहनों, ये सत्य है। मेरी ओर देखो, पृथ्वी के सारे छोर से, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ और दूसरा कोई नहीं है। ओह, हम साम्यवादी को परख सकते हैं, हम हर चीज को परख सकते हैं, परंतु सोचता हूँ यदि हम वचन के भाग को परख सके जो परमेश्वर के द्वारा आज के दिन के लिए ठहराया गया है। मैं सोचता हूँ कि यदि हम चिन्ह को देख सकें जो परमेश्वर ने हमें बताया है, और आज के दिन यह पृथ्वी पर होगा, मैं सोचता हूँ क्या हम ऐसा करते हैं? हाँ, फिर से मूसा पर वापस। वो उसके पास इसके विषय में सारी यांत्रिकी थी, परंतु एक दिन जलती हुई झाड़ी में उसने एक मनुष्य को मनुष्य की आवाज के साथ बोलते हुए सुना, एक जलता हुआ अग्नि का स्तंभ जो वहाँ पीछे झाड़ी में मनुष्य की आवाज में बोल रहा था और कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और मैंने अपने लोगों के कहराने को सुना है, मुझे अपना वचन स्मरण है और मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया हूँ और इसे करने के लिए मैं तुझे भेजता हूँ। क्या ही वो भिन्न मनुष्य था, और जैसे ही उसे मिला उसके पास यंत्रिकी थी लेकिन इसमें उसे गति की मिल गई। निश्चय ही मैं तेरे संग होऊंगा। जाने के लिए मूसा को इतना ही काफी था। उसने दृष्टि डाली और उसने जलती हुई झाड़ी में देखा। बाद में यात्रा में हम पाते हैं इसराइल जब बाहर निकल रहा था, उन्होंने भी देखा और उन्होंने एक पीतल का सर्प देखा और इस पीतल के सर्प में जो उनके रोग निवारण के लिए था, उन्होंने पाप किया था और उन्होंने एक पीतल का सर्प देखा। उन्होंने इस पीतल के सर्प को देखा छाया में परमेश्वर का न्याय जो यीशु मसीह पर डाला जाएगा कि हम में से सारे अयोग्य पापियों दोषी के लिए, यही है जो उसने देखा। चेलों ने उसकी ओर देखा। एक समय वहाँ सागर में परेशानी में थे और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अपनी सहायता देखी। उन्होंने देखा उसमें से होकर सहायता आ रही है। मार्था, जब उसके परिवार में मृत्यु हो गई, उसका अपना भाई लाजरस मर गया था, उसका एक ही भाई था। उसने मृत्यु के समय पर उसकी ओर देखा और उसने पुनरुत्थान और जीवन देखा। यही है जो उसने उसमें देखा। अब ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने मार्था से मुंह मोड़ दिया है। वह दूर चला गया था जब उसका भाई मरा। परंतु पहली चीज जो आप जानते हैं, तुरंत ही उसने पाया उस लड़के के मर जाने के पश्चात और चार दिनों से गड़ा हुआ था, वह पहले से ही बदबू मार रहा था। मार्था जान गई उसमें ऐसा कुछ तो है जो भिन्न था। उसने पवित्र वचन को पढ़ा था। वह उस पर परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास करती थी। इमैनुएल, परमेश्वर प्रकट हुआ। वह जान गई कि वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व था और वो जान गई यदि एलिया एक मरे हुए बालक को जिला सकता था तो वो तो उस घड़ी के लिए बस वचन का भाग ही था। मसीह वचन की संपूर्णता थी। निश्चय ही वह जान गई थी कि उसके पास उसके भाई को जिलाने की सामर्थ्य थी। और जब वो मृत्यु की घड़ी में उसके पास पहुंची, शोक में उसने पुनरुत्थान और जीवन को पाया जब उसने उसकी ओर देखा। उसने उसकी आलोचना करने के लिए उसकी ओर नहीं देखा या उससे पूछे कि वह क्यों नहीं आया या उससे प्रश्न करे। आपको परमेश्वर के वचन पर कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। इसी से सारी मानव जाति संकट में पड़ी है। जब हवा ने प्रश्न किया कि क्या परमेश्वर अपने सारे वचन को रखेगा या नहीं। भाइयों, आज रात्रि मैं कहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के लिखे हुए प्रत्येक वचन का विश्वास करें। इसका हर एक बिंदु सत्य है। मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। अब हम पाते हैं कि मरियम ने पुनरुत्थान और जीवन को देखा। ऐसा ही याईर ने देखा। वह छोटा सा याजक, एक गुप्त विश्वासी, जब उसने यीशु को देखा और उस पर दृष्टि डाली, उसने पुनरुत्थान और जीवन देखा। एक दिन भूखे लोगों ने उसकी ओर देखा और जीवित रखने वाली रोटी देखा। एक नमूना कि आज भूखे जीवन की रोटी पा सकते हैं। न ही मतसार को ढूंढे। आप नेव रखने वाले को नहीं देखते हैं। आप सुधारक को नहीं देखते हैं। आप जब मसीह को देखते हैं तो आप जीवन को देखते हैं जो जीवन की रोटी है। मरते हुए चोर ने उसकी ओर देखा उस संकट की घड़ी में और उसने क्या पाया? उसने अपनी क्षमा पाई। वो और किसे देख सकता था? उस चोर को रोमी सरकार क्षमा न करेगी। कोई भी और उसे क्षमा न करेगा। परंतु उसने यीशु की ओर अपने संकट में देखा और उसने पाया कि कोई है जो उसे क्षमा कर सकता है। मेरे भाइयों, बहनों, आज रात्रि यदि आप लटके हुए हैं जैसे वो तब था उस इंसाफ के तराजू पर, और जानते हुए यदि तू आज रात्रि कलीसिया के गुनगुने सदस्य के समान मर जाता है या एक गुनगुने पेंटिकॉस्ट की नाई या आप जो भी हो सकते हैं, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसकी ओर देखिए आज रात्रि, और वही वो एक है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है। एक आज रात्रि यदि आपकी केवल एक सदस्यता है और नहीं जानते कि मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है, ताकि मनुष्य के हृदय में जिए उसकी ओर देखे, वो परमेश्वर है और केवल वही है। आप इस बेचारे चोर के समान क्षमा पाएंगे। ठोस पाप का भोगी चोर ने किए क्रूस पर लटक रहा है। उन बीमारों ने उसकी ओर देखा, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने चंगा कर्ता को देखा। बीमार आज रात्रि अब भी उसकी ओर देख सकते हैं और एक चंगा कर्ता को देखते हैं। उन्होंने उसमें पाया वही जिसका प्रतिनिधित्व पीतल के सर्प ने किया था। यदि यह छाया थी, यह प्रतिरूप था। अंधे ने उसकी ओर देखा और देख सकता था, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। एक बार कवि ने देखा पाया जो वो देख सकता था। अंधी फिनी क्रॉस बॉय ने एक बार उसकी ओर देखा देखने के लिए जो वो देख सकी। अंधी होते हुए यहाँ उसका उत्तर था, तू जो मेरे समस्त विश्राम की धारा है, मेरे लिए जीवन से अधिक तेरे सिवाय इस धरती पर मेरा कौन है, या स्वर्ग में तेरे सिवाय मेरा कौन है। एक बार एडी पेनरेट जब वो अपने गीत बेच न सका और वह सोच में था कि क्या करे, और वो अपने दफ्तर में वापस आ गया और वह प्रेरणा उस पर उतर कर आई। पवित्र आत्मा कलम को उठाया और उसने दृष्टि की और उसने सामर्थ में देखा और उसने लिखा और गीत की रचना की। सारी जय यीशु नाम की सामर्थ को। वे दूत गिरकर दंडवत करें, शाही मुकुट ले आओ और उसे ताज पहनाओ जो सबका प्रभु है। यही है जो उसने उसमें देखा। ओ प्रभु, पतरस एक स्थानीय मछुआरा था। जब उसका भाई योन्ना बपतिस्मा देने वाले की बेजारी सभा में गया था, इंद्रियास वे इस विषय में बात कर रहे थे कि मसीहा कैसा होगा, और इसी विषय बात कर रहे थे। उसके पिता ने उसे बताया था कि बहुत से कट्टरपंथी उठ खड़े होंगे मसीहा के कुछ समय पहले, परंतु तुम उसे जान जाओगे, वो एक भविष्यवक्ता होगा। प्रभु ने कहा वो एक भविष्यवक्ता होगा। हम भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना समझते हैं। और अतः एक दिन इंद्रियास अपने जितने अनुमान लगा सकता था, उसने अंत में पतरस को उसे सुनने के लिए आने को कहा, क्योंकि वो वहाँ नीचे किनारे पर प्रातः सभा करने जा रहा था। वो वहाँ परमेश्वर का वचन सुनने को गया, और जब वो यीशु मसीह की उपस्थिति में जा रहा था, पतरस ने क्या देखा जब उसने उस पर दृष्टि डाली। उसने कहा, तू तेरा नाम शमोन है और तू योना का पुत्र है। यह हमेशा के लिए तय हो गया। वो जान गया था कि परमेश्वर का वचन पूरा हो गया था। नतानियल एक बार पुराने नियम का सच्चा विश्वासी मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो फिलिपुस के द्वारा लाया गया, जो उसका एक मित्र था। यीशु की उपस्थिति में उसे लाया, मंच पर खड़ा हुआ था, चौखुटे लट्टे पर जो भी हो सकता है बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब नतानियल प्रार्थना पंक्ति में आया या जो भी ये था, और उस पर पहली बार दृष्टि डाली, उसने एक आवाज को सुना उसके लिए और कहा, देखो एक इजरायली जिसमें कोई भी कपट नहीं। उसने कहा, रब्बी तूने मुझे कैसे जाना, तूने मुझे कभी देखा? उसने कहा, इसके पहले कि फिलिपुस तुझे बुलाता, जब तू पेड़ के तले था, मैंने तुझे देखा। नतानियल ने क्या स्वीकार किया जो उसने देखा? उसने क्या कहा? तू मसीह है, तू इज़राइल का राजा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। यही है जो उसने देखा जब उसने उस दिन के लिए परमेश्वर का सच्चा वचन देखा। 400 वर्ष बिना भविष्यवक्ता के, और उसे देखा कि उसके हृदय के सारे विचारों को परख लिया, और उसने जो किया था वह जान गया, यह मसीह से कुछ कम नहीं हो सकता। हमारे पास यह नहीं था, उनके पास ये नहीं था, और इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और हर कोई जान गया था कि समय निकट है। इसलिए क्या हम जानते हैं कि आज भी वैसा ही है? हम जानते हैं यीशु ने इन बातों की प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा, जैसा कि लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। ऐसा ही होगा जब वो आता है। हम इन बातों को होते हुए देखते हैं। क्या आप देखते हैं? अब जब आप उसकी ओर देखते हैं, क्या आप देखते हैं पौराणिक कथाओं को सोचते हैं, या आप किसी प्रकार की एक दूर संवेदना को देखते हैं, या आप क्या सोचते हैं जैसा उन्होंने वहाँ पहले किया? फरीसियों ने उस पर दृष्टि की, वे क्या कहते होंगे, इस मनुष्य में शैतान है। वही लोग उसी व्यक्ति को देख रहे हैं, मनुष्य जाति। एक ने परमेश्वर के पुत्र को देखा, एक प्रतिज्ञा किया हुआ प्रमाणित वचन, और दूसरे एक ने इसे शैतान कहा। आप क्या देखते हैं? आज आप किसे देख रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को देखते हैं, सारे इमारत के अंदर में छा जाती है, उसकी प्रतिज्ञा को इन अंतिम दिनों में पूरा कर रहा है। वो क्या करेगा? आप जब दृष्टि करते हैं तो क्या देखते हैं? यदि आप परमेश्वर के प्रमाणित हुए वचन को देखते हैं, तो फिर यह परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जी हाँ श्रीमान, नतानियल ने प्रतिज्ञा किया हुआ वचन देखा जिसके लिए वो जी रहा था कि उस अभिषिक्त प्रतिज्ञा को देहधारी हुआ देखे। मूसा उस भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा था, वो मूसा अभिषिक्त भविष्यवक्ता उसने इस वचन की प्रतिज्ञा की थी। एक दिन एक महिला कुएं पर थी, बहुत से लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन फरीसी और सदूकियों ने उसे शैतान कहा, उन्होंने कहा यह उसने ज्योतिष विद्या बताने के द्वारा किया। वह एक दुष्ट आत्मा था, वो पागल था, उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके साथ यही परेशानी थी कि वो बस एक स्वधर्म त्यागी मनुष्य था। क्या हुआ? वह सामरिया होकर निकला और सुखार का एक नगर, और जब एक दिन वो वहाँ पर गया और वहाँ उस छोटे से परिदृश्य पर बैठा था, वहाँ एक स्त्री पीने के पानी को लेने के लिए निकल कर आई और उसने कहा, और उसने उस स्त्री को सुना, उसने एक आवाज को कहते सुना, स्त्री मुझे पीने का पानी दे। और वो स्त्री ने उसकी ओर देखा, उसने क्या देखा? पहले तो वो इसे ना समझ सकी, उसने उससे प्रश्न किया, यह रीति अनुसार नहीं है कि सामरी से कहे या तुम यहूदी सामरियों से इस तरह से मांगो। कहा, परंतु स्त्री यदि तू जानती कि तू किससे बात कर रही है। अब याद रखें, वहाँ एक छोटा सा उजियाला था, जीवन का बीज वहाँ पड़ा हुआ था, दुनिया की नींव डालने से पहले ठहराई गई, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बीमार और थक चुकी थी उनके धर्म ज्ञान और आदि से जो उन्होंने कहा था, परंतु वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि एक मसीह का आगमन था। और उसने कहा, जाकर अपने पति को यहाँ पर बुला कर ला। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। कहा, तूने सच कहा, तेरे 5 पति हुए थे। तुरंत ही वो छोटा सा बीज जीवन के लिए फूट पड़ा। उसने क्या देखा? उसने मसीह के चिन्ह को देखा, एक मनुष्य में। उसने देखा प्रतिज्ञा का वचन प्रकट हुआ। उसने कहा, श्रीमान मैं मान लेती हूँ कि तू एक भविष्यवक्ता है। हमारे पास 400 वर्षों से एक भी नहीं था। हम जानते हैं हमारे पास मसीहा के आगमन की प्रतिज्ञा है, और जब वो आता है वो हमें यह बताएगा। यही है जो वो करेगा। समझे उसने क्या देखा? वो क्या समझी? उसने उस दिन के लिए प्रतिज्ञा किए हुए चिन्ह को देखा जो प्रकट हुआ। आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य, एक कलीसिया जो विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यीशु ने प्रतिज्ञा की, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। जब आप दृष्टि करते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब आप रविवार की सुबह आराधनालय में जाते हो, क्या आप अच्छे ऑर्गन के लिए देखते हैं? अच्छे कपड़े पहने हुए सेवक के लिए वस्त्र धारण किए हुए गायन का झुंड, उन रंगी हुई महिलाओं के झुंड को आप किसके लिए देखते हैं? कलीसिया में किसी प्रकार के समाज के लिए तुम इससे और उससे संबंध रखते हो? आप किसके लिए देखते हो? यही है जिसके बारे में आप देखते हैं। यहाँ सुनिए, कोई आश्चर्य नहीं जब आप यह स्पष्ट सुसमाचार ले जाते हैं और पवित्र आत्मा को आते देखते हैं और पुराने चलन के झुंड के लोगों के मध्य में प्रमाणित होते देखते हैं। यह आपके लिए अपरिचित है, इसे आपके लिए विश्वास करना कठिन है। जैसा कि उस रात्रि मैंने यूसुफ के विषय में कहा, उसके लिए यह सोचना कठिन था कि मरियम गर्भवती हुई है, वह भला कैसे हो सकती है? इस प्रकार की छोटी पवित्र महिला, और उसने कहा कि जिब्राइल ने उससे भेंट की थी। परंतु ये बहुत ही असाधारण बात थी। इस प्रकार की बात का होना बहुत ही असाधारण था, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। यही है जहाँ परमेश्वर वास करता है, इस असाधारणता में शारीरिक मस्तिष्क के लिए। परंतु वे जो उसका विश्वास करते हैं कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, सारी बातें संभव है। हर एक वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा होगा। ये असाधारण चीजें हैं जो उसे परमेश्वर बनाती हैं। वो असाधारण के पास जाता है, यह लोगों के लिए हर एक चीज असाधारण बनाता है। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है। उस स्त्री ने उस पर दृष्टि डाली और उसने मसीह के चिन्ह को देखा, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। बहुत से वैसे ही लोग देखा और कुछ भी नहीं देख पाए। नूह के दिनों में अविश्वासी, उन्होंने क्या देखा? एक कट्टरपंथी बड़ी भूल को कर रहा है जिसे वह नाव बताता है, बस उन्होंने यही देखा। जबकि वही नाव अपने आप में दर्शन के द्वारा बनाई गई जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिला। वही बात जिस पर वो विचार कर रहा था, उसका संदेश जो वो प्रचार कर रहा था, वो अपने संदेश के द्वारा बना रहा था, इस बात की गवाही देते हुए कि वो धर्मी था और आगे की ओर देख रहा था। जो उसने प्रचार किया उसी को उसने जिया। यही है जो हमें आज करना चाहिए। किसी मनुष्य को प्रचार करने का अधिकार नहीं जब तक कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना हो। सही है, धर्म ज्ञानी और गणितज्ञ और आदि आदि इसकी पूरी तरह आपसे दूर व्याख्या कर सकते हैं, परंतु यदि एक मनुष्य कभी पीछे रेगिस्तान में रहा हो, उस पवित्र स्थान में और परमेश्वर से मिला हो मूसा के समान, तो फिर कोई मनुष्य इसे उसमें से निकाल नहीं सकता। वो जानता है, वही वो एक है जो वहाँ पर था, उसे कोई और इस विषय में कुछ भी नहीं बता सकता, वो वहाँ पर था। यही वो कारण है यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, तब तक प्रचार न करना जब तक तुम यरूशलेम नगर में जाकर ऊपर से सामर्थ को प्राप्त न करो, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यही है उन्होंने देखा। जी हाँ श्रीमान, नूह वे कुछ नहीं देख सके। यह करने के पश्चात उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन से अज्ञान हो गए और स्वयं पर न्याय को ले आए। यह सही बात है। मैं कहता हूँ जैक मूर के साथ, यह कहने से उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ यह अब ऋतु के अनुरूप है। जैक मूर ने कहा यदि परमेश्वर अमेरिका को नहीं डुबाता है और उसे जलाता है तो उसे सदोम और गमोरा को खड़ा करना होगा और उन्हें जलाने के लिए उनसे क्षमा मांगेगा, और ये सत्य है। परमेश्वर न्यायी है, उसके वचन में न्याय की भरपाई है, और निश्चय ही वह संसार का न्याय करेगा आज उसके वचन के विरुद्ध कार्य के लिए। कोई मतलब नहीं हम कितनी सभाओं को करते हैं, हमारे पास कितनी धार्मिक सभाएं हैं, ये वो नहीं है, ये वचन है। देखिए वहाँ इससे और अधिक धार्मिक समय नहीं रहा था उस दिन से बढ़कर जब यीशु धरती पर आया। ओ, हर चीज धार्मिक और रीति रिवाजों में निगल ली गई थी और यह सब गलत था। ऐसा ही तब था जब आमोस छोटा गंजा प्रचारक आया था। हम नहीं जानते वो कहाँ से आया। उसकी दो टुकड़ी हुई छोटी छोटी आँखों ने जब वो पहाड़ को पार करके आया और सामरिया पर दृष्टि डाली। यह पर्यटकों का महान नगर फिनिश के जैसे, बहुत से लोग संसार भर से आते ताकि देखें, इस बड़े नगर को देखें, यह कितना सुंदर था। ओ, सब कुछ चल रहा था, रात्रि के क्लब, मौज मस्ती करने का वास्तविक स्थान, रहने का एक स्थान, उन्होंने कहा। परंतु जब यह छोटा सा किसान लड़का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित हुआ, वहाँ से होता हुआ आया, उसके आगे जाने वाला कोई नहीं था कि उसकी सभाओं के लिए प्रबंध करे, उसके पास कोई चिन्ह नहीं थे, ना संप्रदाय उससे जुड़े हुए, या कोई नहीं था कि उसके पक्ष में हो। परंतु जब वो पहाड़ को पार करके आया और अपनी छोटी आँखों को सिकुड़ते हुए जब उसने उस नगर की ओर देखा, उसने कुछ तो देखा जो कि बाकी लोगों में से किसी ने नहीं देखा। उन सब ने मौज मस्ती और नगर की चीजों को देखा, परंतु उसने परमेश्वर के आ रहे न्याय को देखा और उसने इसके विरुद्ध भविष्यवाणी की। उन्होंने उसे पागल कहा, परंतु 11 वर्षों के पश्चात जैसा उसने कहा था बिल्कुल ठीक वैसा ही घटित हुआ। मनुष्य जो कलीसिया की ओर देख सकता है, जिस तरह से आज ये चल रही है और जिस तरह से लोग करते जा रहे हैं और भविष्य में आशीष का अनुमान लगा रहे हैं, मैं न्याय का अनुमान लगाता हूँ केवल उसी का। उसके वचन को अनदेखा करने पर न्यायी परमेश्वर न्याय की मांग करता है। वो बस आने वाला है और इसे हमारे सामने प्रमाणित करने वाला है और ताकि इसे सही करें। परंतु न्यायी परमेश्वर इन सारे युगों में से होते हुए वह अपनी योजना को नहीं बदल सकता। वह अपनी योजना कभी नहीं बदलता। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसके मार्ग एक से हैं, उसका वचन एक सा है, सारा का सारा वो एक सा है। यदि कोई प्रायश्चित करने के लिए तैयार है तो वो दया से भरा हुआ है, परंतु यदि आप प्रायश्चित नहीं करते हैं तो न्याय आएगा। फिरौन ने जब वहाँ पर दृष्टि डाली और कहलाने वाले कट्टरपंथी और कहलाने वाला कट्टरपंथी नबी छुटकारे के बहुत से दावों के संग, यही है जो उसने देखा। परंतु इसराइलियों ने मूसा के ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखा। जी हाँ श्रीमान, धनी पुरुष ने दृष्टि की और देखा सामर्थी, परंतु उसका संगठन उससे बहुत बड़ा था जिसमें से वह इसके साथ निकल सकता था। उसकी अगली दृष्टि कहाँ पर है? उसने नरक से बाहर देखा। यह बिल्कुल सही है, उस पर न्याय आ गया। ऐसा अगली बार था जो उसने देखा, ऐसा ही आज बहुत से लोगों के साथ है। एक समय रोमी सिपाही ने दृष्टि डाली जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। उसने देखने के लिए दृष्टि की उसने क्या क्या किया था, परंतु तब ये बहुत ही देर हो चुकी थी। मित्रों, अमेरिका भी यही करने जा रहा है। वे किसी दिन देखने जा रहे हैं और कहेंगे सच में यह परमेश्वर का पुत्र था, परंतु यह बहुत देर हो जाएगी। वे हंसे थे और अंतिम बार इसका उपहास उड़ाया, वो तब केवल देख सकता और देखता कि वो कहां पर बचाया जा सकता है, परंतु तब यह बहुत देर हो चुकी थी। उसने जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ा दिया था। और आज बहुत सी बार लोग यीशु मसीह को उनके हृदयों में अस्वीकार कर देते हैं जब वे उसे स्पष्ट रीति से प्रमाणित होते हुए देखते हैं कि वह कौन है ठीक हमारे मध्य में। जी हाँ श्रीमान, पिलातुस ने एक दिन दृष्टि डाली और मान गया था, परंतु उसकी राजनीति बहुत ही बड़ी थी, वो तब नहीं कर सका, वो इस पर स्थिर न रह सका। लूथर ने दृष्टि डाली और उसने धर्मीकरण को देखा, वह इसके साथ चला, फिर वे संगठित हो गए। फिर वैसे ही वेस्ली आया, पवित्रीकरण को देखा, जब उसने मसीह की ओर देखा कि कलीसिया को पवित्र होना चाहिए, और ठीक संघ इसके साथ चला। साथ ही पेंटिकॉस्टल आए और दानों का वापस आना देखा। उन सब ने क्या किया? बिल्कुल ठीक जैसे कैथोलिक ने किया, इसे संगठित किया, इसे फिर से पीछे डाल दिया। हे परमेश्वर, मैंने एक दिन दृष्टि डाली और जब मैंने किया, मैंने अल्फा और ओमेगा देखा, मैंने आदि और अंत को देखा, मैंने देखा यीशु मसीह कल, और मैंने अपने पापों की क्षमा करने वाले को देखा, मैंने देखा कोई तो है जिसने मेरा स्थान लिया। ओ, आप क्या देखते हैं जब आपने देखा? मैं ठीक अभी अपने पुराने मित्र को देख रहा हूँ, बिल डाउच, जो यहाँ बैठे हुए हैं। यह व्यक्ति 92 वर्ष का होने जा रहा है। कुछ दिनों पहले, अधिक समय नहीं हुआ बल्कि लगभग 6 महीना पहले, उनका हृदय पूरा रुक गया था और कुल मिलाकर हृदय का दौरा हुआ। डॉक्टर ने कहा वो मर रहा है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया और कहा भाई ब्रैनम आइए, वो मर रहा है, बिल तुम्हारा मित्र है। और मैंने कहा तो ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। और अपने मार्ग में उसके घर पहुंचते हुए मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे ये पसंद नहीं कि जाकर उससे अलविदा कहूं। मैं जानता हूं यदि मेरे वहां पहुंचने तक वह जीवित रहा कि मैं उसे अलविदा कह सकूं। वो ऑक्सीजन में है, पूरी रीति से हृदय का दौरा, 91 वर्ष का। मैं पेट्रोल भरवाने के स्थान से बाहर निकला और मैंने देखा, और जब मैंने देखा, मैंने बिल को सड़क पर आते हुए देखा और मेरे साथ हाथ मिलाया। आज रात्रि वो यहाँ बैठा है। वो डॉक्टर जिसने उसे यह बताया था, वो डॉक्टर मर गया है। और यहाँ बिल डाउच स्वयं बैठे हुए हैं, जो लीमा ओहियो से हैं, बर्फबारी में गाड़ी चलाते हुए आए हैं। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वे हर सभा में जाते हैं। क्यों? हमने देखा है, हमने कुछ तो देखा। वही परमेश्वर जिसके विषय में मैंने पिछली रात्रि बातें की, वहाँ उस ओर कोलोरेडो में तूफान के समय में मैंने दृष्टि करके देखा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। यहाँ श्रीमान वे बैठे हुए हैं, एक अंग्रेज यहाँ एक और बैठे हुए हैं, अभी ठीक यहाँ पर, अभी अभी उन्हें यहाँ बैठा हुआ देखा। ये इंडियाना से आए हैं, ये अंग्रेज हैं, उनकी पत्नी एक पंजीकृत नर्स है, भला मनुष्य। एक दिन मैंने उनसे बात की, मैं सभा में प्रचार कर रहा था, जो मैंने कहा वो अपने हृदय में उससे अप्रसन्न था, और जब उसने किया वो ठीक श्रोतागणों के बीच में वहीं गिरकर मर गया। वहाँ वो मर गया, उसकी पत्नी ने उसे पकड़ा और उसको अनुभव किया। उसकी आंखें, गहरा काला पड़ गया था, उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी और वापस सिर के अंदर चली गई। मैंने कहा रुके रहो, वहाँ उसकी ओर देखो, और मैंने सोचा, और ओह, वहाँ वो मनुष्य मरा हुआ है। नीचे बैठा, अपना हाथ उस पर रखा और वो इतना ही ठंडा पड़ गया था जैसे ये मेज है, वह जा चुका था। श्रीमती वे ने कहा ओ भाई ब्रैनम, वो जा चुका है, वो जा चुका है, बहुत जोर की आवाज से चिल्लाई। मैंने दूर देखा, मैंने पुनरुत्थान और जीवन को देखा। मैंने प्रार्थना की कि यीशु ने मुझसे यह बताया कि, और भाई वे जी उठा, ठीक यहाँ पर वो आज रात्रि बैठे हुए हैं, मृतकों में से वापस आ गए, आज रात्रि यहाँ बैठे हैं। यह ठीक है श्रीमान वे, यदि आप बस जरा एक मिनट के लिए खड़े होंगे ताकि लोग आपको देख सके, और यहाँ पर बिल डाउच बैठे हैं। ये क्या है? क्योंकि हम उसकी ओर देखते हैं जो कि एक सा है जिसने लाजरस को जिलाया, वो एक सा ही है जैसा वो था, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। जी हाँ, वो नहीं बदलता। यहाँ मेरे सामने छोटा प्रचारक बैठा हुआ है जिनका नाम ब्लेयर है। उसका छोटा लड़का एक दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी पत्नी वहाँ बैठी हुई थी, अब उनकी आंखों पर से आंसू पोंछ रहे हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर वहाँ बुलाया और उसने कहा भाई ब्रैनम, हमारा छोटा लड़का एक कार में था और पहाड़ी पर से नीचे आ गई और वह दब गया, दिमाग में धक्का लगा है और इत्यादि। वह लगभग चला गया है, धीरे धीरे सांस चल रही है। कहा, क्या आप प्रार्थना करेंगे? मैंने कहा, आइए प्रार्थना करें। और देखना आरंभ किया, यह टेलीफोन पर था, और प्रार्थना करना आरंभ किया। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं उनसे क्या कहूँगा? मैंने देखा एक छोटा लड़का भागता हुआ जा रहा है और रस्सी कूद रहा है, इस प्रकार से नीचे नीचे भाग रहा है। मैंने कहा, वह चंगा होने जा रहा है और आज रात्रि वो यहाँ पर है और यहाँ पर वे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। देखो, देखो, आप क्या देखते हैं? जब आप उसे देखते हैं, मैं उसी चंगा करता को देखता हूँ। आमीन। मैं उसी एक को देखता हूँ जो गलील में चला। मैं उसे उसकी सामर्थ में देखता हूँ। मैं उसे विचारों को परखता हुआ देखता हूँ और हृदय के भेदों को अंत समय से ठीक पहले चिन्हों को दिखा रहा है। हम कैसे इस श्रोताओं में से होकर जा सकते थे और सारे राष्ट्रों में कहते हुए कि वो आज क्या है? आप जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ? जैसे कि उस बूढ़े निगरों ने एक बार कहा था गुलामी के समय में, एक दिन वह उसके पास आया, उसने कहा, आप जानते हैं मैं अब स्वतंत्र हूँ। सो वह दूसरे गुलामों के बीच बताने लगा और गुलामों ने कहा, और यह बात मालिक तक पहुँच गई और मालिक ने कहा, सैम तुम यहाँ आओ। कहा, वह क्या बात है जो तुम वहाँ गुलामों के बीच में कह रहे हो? उसने कहा, मालिक मैं स्वतंत्र हूँ। बोला, तुम कैसे स्वतंत्र हो? उसने कहा, मैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है। उसने कहा, सैम तुम्हारा ये अर्थ है? उसने कहा, जी हाँ। कहा, मैं जाकर और तुम्हारी आजादी के लिए हस्ताक्षर करूँगा और तुम्हें जाने दूंगा कि अपने भाइयों को इस विषय में बताओ। उस बूढ़े मनुष्य ने वर्षों और वर्षों प्रचार किया। अंत में एक दिन वह इसके द्वार पर आया। उसे उसके इस जीवन के भाग से अलग होना था और जिस समय वो अपने खाट पर पड़ा हुआ था, कुछ दिनों से वो बेसुधी की अवस्था में था। उसके बहुत से श्वेत मित्र साथ ही उससे देखने के लिए आए और अलविदा कहने आए क्योंकि वो एक मसीह का पुराना बहादुर सिपाही था। जबकि वह अपनी खाट पर पड़ा हुआ था, वो होश में आया। उसने चारों ओर दृष्टि करके देखा और उसने कहा, मोसे, क्या तुम या सैम तुम अभी तक नहीं गए? नहीं। कहा, मुझे वापस आना था। उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर था। कहा, मैंने अवश्य ही स्वप्न देखा होगा। कहा, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर था और जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, कहा, एक दूत मुझे उस द्वार पर ले गया और कहा, दूत वहाँ पर आया और बोला, सैम आओ, अपना ताज लो और आकर अपने वस्त्र को लो। उसने कहा, मुझसे ताज और वस्त्र के विषय में बात न करो, बस मुझे यहाँ खड़े होकर उसकी ओर लाखों वर्ष तक देखने दो। उसने उसमें देखा वो एक जिसने उसे पाप और मृत्यु से स्वतंत्र किया। वहाँ उसने उस एक को देखा जो संकट और सुख में उसके संग बना रहा। हे परमेश्वर, एक सुबह मैं अपने खाट पर लेटा हुआ था। मैं अक्सर, आप मेरी जीवन कथा को जानते हैं, मेरे पास एक पुराना कुत्ता था, हम उसे फिट्ज बुलाते थे। वह मुझे विद्यालय ले गया, हिरणों के छिपने के स्थान और आदि आदि। तो मैं उसे अक्सर हर सुबह ले जाया करता था। मैं ऊपर जाता, सीढ़ी से ऊपर छोटे से लट्ठे के कमरे में चढ़ जाता। मैं उसे सीढ़ियों के नीचे भौंकते हुए सुनता। उसने मुझसे कभी धोखा नहीं किया, हमेशा ही उसके पास गया। मेरे लिए उसके पास कुछ तो था। आप जानते हैं, किसी एक सुबह मैं उसे वहाँ चारागाह में भौंकते हुए सुनूंगा। मुझे अवश्य ही वहाँ जाकर और देखना चाहिए कि उसके पास क्या है। ये ठीक होगा। भाइयों सुनिए, मैं आपको बता दूं, वहाँ केवल एक ही चीज देखने को है। जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, यही परमेश्वर को उसमें देखना है। कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूँ वो आज रात्रि यहाँ पर है हमारे लिए वैसा ही करने के लिए जैसा उसने तब किया। आइए हम एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें। आज रात्रि क्या कोई एक यहाँ पर है जो कहेगा, भाई ब्रैनम परमेश्वर से मांगे कि मुझ पर अनुग्रहकारी हो, मैं देखना चाहता हूँ और उसे भिन्न प्रकार से देखना चाहता हूँ। मैंने उसकी ओर देखा और अनुमान लगाया, मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, मैंने उसकी ओर देखा और प्रश्न किया, वास्तव में क्या उसने मेरी चिंता की? क्या वो मुझसे प्रेम करता है? क्या ये सारी बातें जो उसके विषय में कही गई हैं, क्या ये सत्य है? मैं जानना चाहता हूँ क्या ये सत्य है। क्या आप उससे मांगेंगे कि मुझ पर आज रात्रि प्रकट करे? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? प्रभु आपको आशीष दे, ये अच्छा है। हर कहीं बहुमूल्य प्रभु, आपके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। हम जानते हैं कि आप कल आज और सर्वदा एक से हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि जब हम उसकी ओर देखें तो हम यीशु मसीह को देखेंगे। आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि वे काम जो आपने किए हम भी करेंगे। आपने अंतिम दिनों में प्रतिज्ञा की है कि आप यहाँ इस धरती पर वापस आएंगे पवित्र आत्मा के रूप में। कलीसिया सामर्थ से भरी हुई होगी पवित्र आत्मा से। आपने कहा थोड़ी देर रह गई है और संसार को कोई लाभ न होगा कि देखें, क्योंकि वे इसे नहीं देखेंगे, परंतु तुम इसे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और यहाँ तक तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक। प्रभु यीशु, जबकि अब भी मनुष्य के लिए सौभाग्य है कि देखें होने पाए, आज रात्रि वे देखने पाए और उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में देखें। वो मरा नहीं है, परंतु वो सदा तक जीवित है, बिछवाई के लिए तैयार है उनके लिए जो उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। प्रभु इसे प्रदान करें और होने पाए ये जो सारे निवेदन मांगे गए हैं प्रदान करें। पिता, इन बातों को यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें, आमीन। अब यह बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय है। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर उत्तर को देगा। अब मैं विश्वास करता हूँ कि बिल्ली ने बहुत सारे प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या ये भी श्रृंखला के हैं? बी के, तो ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, मैंने थोड़ा सा अधिक समय ले लिया, मुझे क्षमा करें, मेरे पास कुछ ही मिनट है। बी, हमने कहाँ से छोड़ा था पिछली रात्रि? हमने कहाँ पर छोड़ा था? ओह, सारे ले लिए। हम अब बी से आरंभ करेंगे, संख्या एक से। तब तो ठीक है, संख्या एक कौन? तीन, चार, पाँच। अब क्या कोई ध्यान देगा? यहाँ आए बिली, आप में से कोई तो जल्दी से, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। हम बस और समय न लगाएं। कभी कभी वे बहरे होते हैं और सुन नहीं सकते हैं, और या हो सकता है उठ नहीं सकते या ऐसा ही कुछ। और यदि वे हैं, क्यों हम संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ठीक है, यहाँ सामने आ जाएं। क्या आप आएंगे? वहाँ है, एक, दो, तीन, चार, ये ठीक है, मुझे क्षमा करें श्रीमान। छः, सात, आठ, नौ, दस, अब ये लोग खड़े हो जाएं। छः, सात, आठ, अब कोई आठ, नौ, दस, आठ, नौ, तो ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, आठ, नौ, दस।
And B's. Well, that's all the cards is out. 15. All right, 15 to 20, stand up. 1 to 20 in prayer cards. Take your place over here.
तो ठीक है, 10 से 15 खड़े हो जाएं। B श्रृंखला के ये सारे पत्र दिए गए हैं। 15, तो ठीक है, 15 से 20 खड़े हो जाएं। 1 से 20 प्रार्थना पत्रों में अपना स्थान यहाँ पर लें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, यही है। 20 से 25 कितनों के पास प्रार्थना पत्र नहीं है? आप फिर भी उस पर विश्वास करें जिस समय वे आ रहे हैं और अपना स्थान ले रहे हैं, जबकि वे जो 25 हैं, पहले 25 आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बाइबल ने कहा इब्रानियों की किताब में कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, क्या आप यह विश्वास करते हैं? वो एक जिसे हमारी दुर्बलताओं के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। क्या हम इस दिन में निर्धारित करने जा रहे हैं उबाऊ और अपने महायाजक हमारे मध्य में खुद को ज्ञात करवाते हुए देखें कि गूंगे चरने वाले पशुओं के समान बैठे हैं? आइए हम उठें और हृदय से किसी भी संघर्ष के लिए चरने वाले गूंगे पशुओं के समान नहीं, नायक बने। आप लोग इस ओर देखें और विश्वास करें, पवित्र लेख में देखें उसने क्या प्रतिज्ञा की है। तो ठीक है, हम कोई समय नहीं लेंगे, हम सीधे प्रार्थना पंक्ति में आरंभ करेंगे। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, अब यह आपके हाथों में है, मैं आपके हाथों में हूँ। प्रभु, हम वचन को लें जो आपने कहा, जैसा कि सदोम के दिनों में था, वो एक जिसका मैंने आज रात्रि उल्लेख किया है। आपने संत यूहन्ना 14:12 में कहा है, जब आप अपने दूर चले जाने के विषय में अपने चेलों से बात कर रहे थे, आपने कहा वो जो मुझ में विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। बाइबल ने ये कहा, परमेश्वर ने बीते समय में भिन्न भिन्न रीतियों से भविष्यवक्ताओं से बातें की, या पूर्व पिताओं से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, अंत के दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, और वो वचन है। हम जानते हैं कि वे नबी आए, आत्मा उनके ऊपर आया और वचन को उस पीढ़ी के लिए जीवित किया, राजाओं को शापित किया, न्याय में लाया, धर्मियों को बाहर निकाला, होए हुओं को बचाया, वे भविष्यवक्ता जिनके पास वचन आया। अब इस अंत के दिन में प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है, आपने कहा है जैसा कि ये सदोम के दिनों में था, जिस तरह अब्राहम दिन की गर्मी में वहाँ बैठा हुआ था, वह छोटी बाहर बुलाई गई कलीसिया। आज हम संसार की ओर देखते हैं पिता, हम बिल्कुल ठीक सदोम को देखते हैं, अन्य जातियों की भ्रष्टता, गुनगुनापन, और हम इन तीनों दूतों को अब्राहम के समक्ष प्रकट होते देखते हैं। उनमें से दो दूत वहाँ नीचे गुनगुनी कलीसिया में गए लूत, ताकि उन्हें बाहर निकालने का यत्न करें। दो वहाँ नीचे चले गए आधुनिक बिली ग्राहम कि उन्हें बाहर निकाले। कोई आश्चर्य कर्म नहीं, केवल उनकी आंखों को अंधा किया। सुसमाचार का प्रचार करना इसे करता है। परंतु वहाँ एक दूत था जो अब्राहम के झुंड के साथ रुका रहा, जो चुने हुओं को दर्शाता है। बाहर बुलाए हुए ये सदोम में नहीं था, सदोम से बाहर जन्मे थे सच्ची कलीसिया, जो आज का अब्राहम का बीज है। और जब यह मनुष्य जिसने उनसे बात की कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है, कहा वह तेरे पीछे तंबू में है, और उसने कहा मैं जीवन के समय के अनुसार तुमसे भेंट करूंगा, और वो हंसी। उसने कहा वो क्यों हंसी, परख लिया कि वो क्या कह रही थी और स्वयं में जो सोच रही थी। उसकी पीठ तंबू की ओर थी जहाँ पर वो थी। यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र, उसने अपने वचन में हमें बताया जैसा कि ये उस दिन था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में होगा। और यह बहुत विचित्र बात है पिता, कि इन सारे युगों में कभी भी एक सुधारक नहीं हुआ जो वहाँ सदोम में गया, जिसके नाम का अंत HAM से हो, आज के दिन तक नहीं हुआ। आपका दास बिली ग्राहम वहाँ सदोम में अपने कार्य को कर रहा है। अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अब्राहम के बीज को बचाएंगे, जो आज रात्रि यहाँ पर है, उन्हें अपने बहुमूल्य प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के पवित्र आत्मा से भर दे। तुरंत ही इसके बाद परमेश्वर देह में प्रकट हुआ और इस चिन्ह को दिखाया, तब प्रतिज्ञा का पुत्र दृश्य पर आ गया। परमेश्वर, हम उसके लिए 2000 वर्षों से राह देखते आ रहे हैं, अब्राहम का बीज। बहुत से सो रहे हैं, ये सातवीं घड़ी है, हम उस पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भी समय आ जाए, देखो दूल्हा आता है। पिता, आज रात्रि प्रदान करें, जिससे कि लोगों की समझ खुल जाएगी, जो वे देखेंगे कि इस चिन्ह की प्रतिज्ञा दी गई थी पुत्र के आने से ठीक पहले। जैसे कि पीतल का सर्प भी मसीह को दर्शाता है, वैसे ही पुत्र का आगमन और उसकी आगमन का चिन्ह स्वाभाविक रूप से आत्मिक को दर्शाता है। आज यीशु का आगमन अब्राहम का शाही वंश है। प्रभु इसे प्रदान करे, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, जैसे कि हम खुद को आपको समर्पित करते हैं, आमीन। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोगों पर दान के विषय में गलत प्रभाव है। एक दान कुछ ऐसा नहीं है जो परमेश्वर आपको देता है कि जाकर और कहें, यहाँ मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसे ले लूँगा, और मैं वो ले लूँगा, और मैं ऐसा करूँगा। ये दान नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु वे गलत रूप से प्रभावित हैं। परमेश्वर का दान बस ये जानना है कि स्वयं को बीच में से कैसे हटाएं, जिससे कि परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। यही तो दान है, समझे? जब तक आप अपने आपे में हैं, क्या यीशु ने खुद यह नहीं कहा, पुत्र वही कर सकता है? संत यूहन्ना 5:19, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं करता, वो उस तालाब के पास से होकर निकला जहाँ वे सारे अपाहिज थे, और एक ही व्यक्ति को चंगा किया जो प्रोस्टेट ग्रंथि की तकलीफ से पीड़ित था, या ऐसा ही कुछ तो बीमारी से रुका हुआ था। उसने कहा पुत्र स्वयं में कुछ नहीं कर सकता, परंतु जब वो पिता को करते देखता है, पुत्र भी वैसा ही करता है। ये मैं नहीं, उसने कहा, जो इन कार्यों को करता है, ये मेरा पिता है जो मुझ में वास करता है, वो कार्यों को करता है। अब आप लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, आप किसी मनुष्य की ओर देखने का साहस न करें, आप मसीह को देखें, वही वो एक है। परंतु उसने अंतिम दिनों में प्रतिज्ञा दी है कि वो स्वयं को मानव देह में प्रकट करेगा, जैसा उसने वहाँ सदोम में किया। अब आपकी देह मेरी देह, आइए हम अपने हृदयों को खोलें और हमारे खुद के विचारों को दूर करें और केवल वचन को हम में अपने कार्य को करने दें। उसके बाद हम परमेश्वर की आत्मा के महान दानों को हमारे सामने प्रकट होते हुए देखेंगे। वास्तव में श्रद्धा पूर्वक बने रहें, कोई भी छोड़कर न जाए, बिल्कुल शांत रहें और प्रार्थना करें। मुझे पक्का है कि आप सराहना करते हैं। और यदि यहाँ पर कोई भी है जो सोचता है यह तो झांसा है, तो मैं आपको मंच पर आने की चुनौती देता हूँ। कोई भी हो, तब यदि आप इसे करने से डरते हैं तो इसके बारे में कुछ भी न कहें। यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक आत्मा जो यहाँ पर है अपने नियंत्रण में लेता हूँ कि परमेश्वर के वचन को घोषित करूँ। आज रात्रि यहाँ ऊपर यूहन्ना चौथे अध्याय की तस्वीर है। एक पुरुष और महिला एक साथ भेंट करते हैं। मैं समझता हूँ पहली बार, मैं आपको नहीं जानता, संभवत है आप मुझे जानती हैं अखबारों के द्वारा और मेरे लिए सुना है, परंतु मैं आपको नहीं जानता। आप ये जानते हैं हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, जैसे कि हमारा प्रभु एक बार कुएं पर एक महिला से मिला। एक पुरुष और महिला भेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, परंतु यदि मैं हमारे किसी भाई में से एक के समान आकर कहूं, परमेश्वर ने मुझे चंगाई का दान दिया है। आप जानते हैं कि चंगाई का दान क्या है? चंगाई में विश्वास करना। देखो, आपको बस आपके विश्वास को प्रदर्शित करना है ताकि किसी के लिए प्रार्थना करें। बस यही चंगाई का दान है। हर सेवक के पास ये होना चाहिए, प्रत्येक के पास। देखो, चंगाई का दान होना चाहिए। सामर्थ जो आपको चंगा करती है, जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा, आपको केवल इसे अपने तरह से कार्य करने देना होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पेड़ के अंदर का जीवन होता है। आपको पेड़ में सेबों को नहीं उड़ेलना होता है कि ये सेबों को लाए, इसे बस जमीन में बो दिया जाता है और ये पानी को पीता है और बाहर धकेलता है। तो इसी तरह से आप पवित्र आत्मा से करते हैं, ये आपके भीतर होता है। आप बस ना चुकने वाले सोते यीशु मसीह से पीते हैं और ये आत्मा के फलों को बाहर धकेलता है। समझे? अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको नहीं जानता, परमेश्वर ये जानता है। आप पूरी तरह से अजनबी हैं। अब यदि मैं बढ़कर और आप पर हाथ रखूँ और कहूँ, बहन आप चंगी होने जा रही हैं, आप इसका विश्वास कर सकती हैं और ये ठीक हो जाएगा। परंतु अब क्या हो यदि वो आता है? देखो, ऐसा उन दिनों में था जो बीत गए, पहले पेंटिकॉस्टल के दिनों में। अब हम उससे आगे के दिनों में रह रहे हैं। हम पेंटिकॉस्ट से आगे हैं, वैसे ही जैसे हम मेथोडिस्ट और लूथरन से हैं। हम लोग आगे प्रभु के आगमन पर हैं, जहां वो सेवकाई जिसे यीशु मसीह ने स्वयं करी बिल्कुल ठीक वैसी ही होगी, जैसा कि पिरामिड पर चोटी का पत्थर इतना काटा छाटा जाना होगा जब तक हर एक पत्थर सही सही न बैठ जाए। और कलीसिया को ऐसी स्थिति में आना ही है ताकि चोटी के पत्थर को ले सके। उसके बाद सारी चीज को पुनरुत्थान में ले लेगा जब वो देह उठ खड़ी होती है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप इन बातों को विश्वास करते हैं जो मैं आपको बताता हूँ सत्य है? क्या आप करते हैं? यदि प्रभु यीशु मुझे कुछ तो बताएगा जो आपने किया है, कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ तो जो आपके साथ गलत है, या जो भी हो सकता है आर्थिक घरेलू बात, मैं नहीं जानता, ये जो कुछ भी हो, आप मेरा विश्वास करेंगी? क्या आप करेंगी उसका दास होने का? आप एक मसीही हैं। देखो, मैंने आपसे बात की ताकि आपकी आत्मा को जान सकूं। देखिए, इसी प्रकार से उसने ये कुएं पर किया। उसने कहा, मुझे पीने को पानी दे। आप एक मसीही हैं, आप एक विश्वासी हैं, ये ठीक बात है, ना ही एक रुकावट करने वाली, एक विश्वासी। तो ठीक है, आपकी परेशानी, आपकी मुख्य परेशानी आपकी गर्दन में है। आपकी गर्दन के पीछे मांस बड़ा हुआ है और वो बड़ा मांस आपके ऊपर दबाव बनाता है, यह आपकी आंखों को इत्यादि को नष्ट कर रहा है। ये सही है, ये यहोवा यो कहता है वो है, ये ठीक बात है। यदि आप इसका विश्वास करेंगी तो ये चला जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जाएं। आप कैसे हैं श्रीमान? मैं आपको नहीं जानता, हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। यीशु मसीह आज और सर्वदा एक सा है। यदि मैं स्वयं को विश्राम अवस्था में ला सकूं, इतना अधिक कि पवित्र आत्मा मेरे होठों का और मेरी आंखों का उपयोग कर सके, बिल्कुल जैसे, क्या आपने कभी स्वप्न देखा? निश्चय ही आपका कोई भाग आपको निष्क्रिय करना होगा आपकी पांच चेतनाओं में। आपके पास एक विवेक है और एक अवचेतन है। आपका पहला विवेक यहाँ है और आपका अवचेतन यहाँ पर है। आपको अपनी पांचों चेतनाओं में निष्क्रिय होना होगा कि यहाँ स्वप्न में जाएं, परंतु जब आप स्वप्न से वापस आते हैं यह इस पर प्रभाव डालता है जब तक आप याद करते हैं कि आपने क्या स्वप्न देखा। अब नबी भविष्यवक्ता उनका अवचेतन यहाँ पर नहीं होता, ये ठीक यहाँ पर है। वे अपनी पांच चेतनाओं से बाहर नहीं जाते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप खड़े होकर स्वप्न देख रहे होते हैं। आप कहेंगे स्वप्न, मैं कहूँगा स्वप्न मेरे लिए स्वप्न है, आप इसे नहीं कर सकते, न ही मैं आपको एक दर्शन दिखा सकता हूँ, यह तो परमेश्वर है जो ऐसा करता है। परंतु इसे देखने के लिए मुझे सोना नहीं पड़ता, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और इसे देखता हूँ, यह परमेश्वर का दान है। यदि मैं पहला विवेक सामने से हटा दूं, तो परमेश्वर दूसरे विवेक का उपयोग करेगा, यदि उसे कुछ कहना है तो यह तो उस पर है। परंतु यदि परमेश्वर की सहायता से मैं समक्ष हो जाऊं, यदि यीशु यहाँ इस सूट को पहनकर यहाँ खड़ा होता था जो उसने मुझे दिया, यदि आप बीमार हैं, वह आपको चंगा नहीं कर सकता, नहीं उसने यह पहले से ही कर दिया जब वो मरा। परंतु मैं नहीं जानता कि आप यहाँ किस लिए हैं, आप बस एक मनुष्य ही हैं और हम लगभग एक सी आयु के हैं और हम बस यहाँ इस मंच पर खड़े हुए हैं, पहली बार मिल रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझ पर आपकी इच्छा को प्रकट कर सकता है, या आपने क्या किया है, या आपकी रुकावटें? यदि वो आपको बता सके कि क्या हुआ है, वह आपको बता सके कि क्या होगा, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, परंतु मैंने दृढ़ता से प्रचार किया है और आपके पास समय बेचैन, आपको वास्तव में विश्राम अवस्था में होना है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो मुझे न दिखाए। हाँ, ये यहाँ पर है, वो उजियाला वहाँ उस व्यक्ति पर आ रहा है। तो ठीक है श्रीमान, नहीं श्रीमान, आप यहाँ अपने लिए नहीं है, आप यहाँ किसी और के लिए है, और यह एक पुत्री है, और ये पुत्री कैलिफोर्निया में रहती है और उसकी कार दुर्घटना हुई है कुछ समय पहले और मुझसे चाह रहे हैं आप यहाँ खड़े हुए हैं कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि वो अब भी उसके कारण कष्ट में है। और सुनिए, मैं आपको कुछ तो बताऊं कि कार दुर्घटना कैलिफोर्निया में नहीं हुई थी, ये डलास टेक्सास में था जहाँ पर कार दुर्घटना हुई। क्या ये सही बात है? वह चंगी होने जा रही है, मत भूलिए, मैं उसे जाते हुए देखता हूँ। तो ठीक है, विश्वास करें, जाइए और अब विश्वास करें भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, आप कैसी हैं? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम पूरी तरह से अपरिचित हैं। क्या विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? आप उस पर विश्वास करती हैं? अब यदि पवित्र आत्मा मुझे आपके विषय में कुछ बता सकता है जो आप जानती हैं, मैं नहीं जानता, तब ये क्या आपको विश्वास करवाएगा? क्या ऐसा नहीं है? आपके पास परेशानियां हैं, आपके साथ बहुत सी चीजें हैं, परंतु जो आपकी मुख्य बात है, आपको एक ट्यूमर होने के कारण ऑपरेशन का सामना करना है और ट्यूमर आपकी बगल में है। ये ठीक है, ये सही है, यही है जिसके लिए यहाँ आप प्रार्थना करवाने के लिए हैं। यदि मैं आपको बता सकूं कि आपका क्या नाम है, तो क्या आप मेरा उसका भविष्यवक्ता होने का विश्वास करेंगी या विश्वास करेंगी? ये ठीक होगा, कुमारी होलमन, अपने मार्ग पर जाएं, आनंद करते हुए। देखा, परमेश्वर आपको आशीष दे, अब विश्वास करें, संदेह न करें।
How do you do, lady? Strangers to one another. You're younger than I, just a woman and a man. Just a moment. Everybody real reverent. Spirit of the Lord left you.
महिला, आप कैसी हैं? एक दूसरे के लिए अपरिचित, आप मुझसे छोटी हैं, बस एक महिला और एक पुरुष। एक क्षण रुकना, हर एक जन वास्तव में श्रद्धा पूर्वक रहे। प्रभु का आत्मा यहाँ से चला गया। यह मनुष्य यहाँ पर बैठा हुआ है, चश्मा पहने हुए है, उसकी आत्मिक समस्या है आपके दिमाग में, आप नहीं जानते कि क्या करूं, आप पूरी तरह से उलझन में हैं। आप विश्वास करें और आप पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आ जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, आप ऐसा करेंगे तो ठीक है। अब श्रद्धा पूर्वक रहें, यहाँ एक छोटी महिला है जो ठीक यहाँ बैठी हुई है, वो इस प्रकार से देख रही है, अपने हाथों के साथ प्रार्थना कर रही है, उसका एक हाथ खराब है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही है। यदि आप विश्वास करेंगी, जी हाँ, परमेश्वर इसे चंगा कर देगा। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, परंतु आपने कुछ तो छुआ है, आपने मुझे कभी नहीं छुआ, आप मुझसे 20 फुट दूरी पर हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करता है, आपका विश्वास आपको चंगा करता है। यदि यह वही यीशु नहीं है, वो महायाजक जिसे हमारी दुर्बलताओं के साथ छुआ जा सकता है, क्या आप ऐसा होने का विश्वास नहीं करते? मुझे क्षमा करे, मुझे बस उसी का अनुकरण करना है जो चलाता है। अब दुर्बल हो रहा हूँ, आप देखे, बस एक, आप जानते हैं, एक बार हमारे प्रभु के वस्त्र को एक महिला ने छुआ था और उसने कहा मुझे क्षमा करे, यह अश्वेत महिला यहाँ बैठी हुई है, प्रार्थना कर रही है, पित्ताशय की परेशानी, तेज रक्तचाप है, महिला विश्वास करें, यह आपको छोड़ देगा, आमीन। मैं वहाँ देखता हूँ कि एक अश्वेत महिला वहाँ पर खड़ी हुई है, देखिए उसके विश्वास ने उसे वहाँ खींच लिया, आमीन।
That lady right behind her with asthma, if you believe that God will make you well of that asthma, you can have it also, if you believe it.
वो महिला जो ठीक उसके पीछे है, दमे के साथ है, यदि आप ये विश्वास करेंगी कि परमेश्वर आपको दमे से चंगाई देगा, तो इसे पा भी सकती हैं, यदि आप इसका विश्वास करेंगी।
You have a great desire in your heart.
आपके हृदय में एक बड़ी इच्छा है, और ये एक उचित इच्छा है। आप एक बालक को चाहती हैं और वो कारण कि आपके पास ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपको एक महिला रोग है और ये ठीक बात है तो ठीक है। क्या अब आप विश्वास करती हैं कि आपको कि परमेश्वर आपको ये देगा? यदि प्रभु यीशु मुझे बताता है कि आप कौन हैं, क्या आप विश्वास करेंगी? श्रीमती लैम्बर्ट, अब आप जाएं, इसे विश्वास करें। क्या इससे आपको विश्वास होता है? होने पाए वो इसे प्राप्त करे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखें। श्रीमान, हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, परंतु परमेश्वर हम दोनों को जानता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मुझ पर आपकी परेशानी को प्रकट करेगा? आप करते हैं। आप यहाँ से नहीं हैं, आप एरिजोना से नहीं हैं, आप वहाँ दूर पूर्वी मिशिगन से हैं। ये ठीक बात है, सही है। आपको तेज रक्तचाप है और नसों से रक्त के प्रभाव में मुश्किल हो रही है, सुनने में मुश्किल होती है, यह आपको छोड़ गया, वापस मिशिगन जाएं। प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। परमेश्वर में विश्वास रखें। वो महिला जो यहाँ बैठी हुई है अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रही है, उसे पार्किंसन रोग है और अब मैं उसे देखता हूँ और उस पर परछाई है, न ही उस पर मृत्यु की परछाई है परंतु अनंत मृत्यु, क्योंकि वो बचा हुआ नहीं है। यह सत्य है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उसे बचा लेगा और उसे चंगा करेगा? यदि आपके पास यीशु मसीह को छूने के लिए पर्याप्त विश्वास है, हमारा महायाजक, निश्चय ही आप यह स्वीकार कर सकती हैं। अब क्या आप मेरी तरफ से एक काम करेंगी? आप अपना हाथ उस महिला पर रखें जो आपके पास बैठी है। वह अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही है। जी हाँ, वह भाई बीमार है और शराबी भी है। ये ठीक बात है, बस विश्वास करें, वो पीना छोड़ देगा और चंगा हो जाएगा। यदि तू विश्वास कर सके तो सारी बातें संभव है।
The lady sitting here praying, right here in front of me, got her head down. I can tell you she's praying, Lord, let it be me.
वो महिला यहाँ बैठी हुई है, ठीक मेरे सामने प्रार्थना कर रही है, अपना सिर नीचे किए हुए। मैं आपको बता सकता हूँ, आप प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु ये मैं होने पाऊँ।
The lady is
महिला, वो एक मित्र के लिए प्रार्थना कर रही है, वो यहाँ अस्पताल में है, वो कैंसर से मर रही है और स्वयं अपने लिए भी प्रार्थना कर रही है, वो इसे चूकने जा रही है। श्रीमती केली, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और चंगाई को ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में, मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर हृदय के रोग को चंगा कर सकता है? क्या विश्वास करते हैं वो आपको करता है? तो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ें, कहते हुए प्रिय परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपके लिए सुबह को उठना कठिन होता है, आप गठिया से बहुत अधिक अकड़ जाते हैं। ये कल से ऐसा नहीं होगा यदि आप बस इसे विश्वास करें और बढ़ते जाएं। जी हाँ श्रीमान, ठीक है श्रीमान, आपको आवश्यकता है कि कलवरी से आप में लहू चढ़ाया जाए, ये मधुमेह और हर एक चीज को चंगा करता है। आप विश्वास करते हैं कि वो ऐसा करता है तो ठीक है, आप भी चंगे हो सकते हैं यदि आप बस अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। यहाँ आइए, आपकी नसें कमजोर हैं, यही आपकी परेशानी का कारण है, आपके पेट में फोड़ा हुआ है। क्या आप विश्वास करती है कि परमेश्वर इसे चंगा करेगा? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी घड़ी को एक मिनट के लिए उतारता हूँ। कमजोर नसें हैं, यह एक प्रकार से मुश्किल है, परंतु आप एक अच्छे प्राण हैं। मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, मैं आपके हाथ को पकड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ को देखें। अब देखें, आपके हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रख रहा हूँ। अब आप इसे देखें, क्या देखते हैं? ये चीजें वहाँ यहाँ से वहाँ दौड़ रही हैं, ये छोटी तरंगों के समान, ये वो जीवित फोड़ा है। अब देखिए, अपना हाथ हटा लें, अब ये वापस साधारण हो गया। अब मैं अपना हाथ उस पर रखूंगा, ये अब वैसा नहीं करता, क्या करता है? परंतु अब आपका हाथ इस पर रखूंगा और ये फिर से वहाँ पर है, देखा? अब यह यहाँ किसी को दर्शा रहा है जिसे आप वास्तव में अपनी खुद की आंखों से देख सकते हैं। क्या ये ठीक बात है? अपना हाथ उठाएं ताकि सभा के लोग देख सकें कि यह सत्य है। यहाँ सभा के लोग इसे देख सकते हैं। अपना हाथ यहाँ पर रखें। अब अपने हाथ को हटाएं महिला, अब फिर अपना हाथ वहाँ रखें। यह एक जीवित फोड़ा है, यह मांस तंतु है, कुछ तो मांस तंतु को खाते जा रहा है। ये कमजोर नसों के कारण हुआ है, फैल रहा है। आपको महिला रोग भी है तो ठीक है। अब ये होता है जब आपको कदम को उठाना होता है जिससे कि ये महिला जान जाए। अब मैं चाहता हूँ कि सभा के लोग अपने सिरों को झुकाए रखें और प्रार्थना करें, क्योंकि ये एक से दूसरे में जाता है। जब आपको करना पड़ता है, यीशु ने कहा कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब अपने सिर को झुकाए रखें यदि आप उस एक फोड़े को नहीं चाहते हैं, समझे? अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, आपको एक फोड़ा है। अब आप मेरा हाथ देखें और देखें, मैं अपने हाथ को नहीं हिलाता हूँ। स्वर्गीय पिता, होने पाए कि आपकी दया और अनुग्रह इस महिला पर हो कि ये चंगी हो जाए। वो मेरे हाथ को देख रही है, वो देख रही है पिता कि देखे कि क्या कोई बदलाव हुआ है, और मैं जानता हूँ कि उसका विश्वास अधीर अवस्था में है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसकी सहायता करें, यीशु के नाम में उसकी सहायता करें। अब वो महिला, मैंने अभी तक अपनी आंख नहीं खोली है, परंतु महिला जानती है कि मेरा हाथ अब भी वैसा ही है जैसे ये था। महिला, क्या ये सही बात नहीं है? अब ध्यान दें, अब इसे बहुत ही ध्यान से देखें। सो ये तमाशा करने के लिए नहीं किया गया है, ये इसलिए किया गया जो घोषणा करता है कि यीशु अपने वचन को बनाए रखता है। अब उसने कहा, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब मैं अपना हाथ वैसे ही टिका कर पकड़ने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यह मेरा हाथ पकड़ने का तरीका नहीं है। देखो, ये वहाँ हर समय से है, देखिए ये कैसे सूज गया है, हर बार और खराब होता जा रहा है क्योंकि मैं पकड़े हुए हूँ। मेरा पूरा हाथ सुन्न हो गया है, कोहनी तक। अब आप जरा ध्यान दें कुछ समय के लिए। प्रभु यीशु, तमाशा करने के लिए नहीं हमें ऐसा करना है, परंतु इसलिए कि आपका वचन पूरा हो सके। आपने लोगों को इसलिए कभी भी चंगा नहीं किया कि आप तमाशा करें कि आप परमेश्वर थे, परंतु ये वचन का पूरा होना था। और इसी प्रकार से मैंने आज रात्रि ऐसा क्यों किया? पिता, मेरा भरोसा है कि ये भली महिला इसे विश्वास करे और इस दुष्ट से चंगी हो जाए। शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, जो सारी बीमारियों पर जयवंत रहा और ये उसके पांव के नीचे है, और उसके दास के नाई, मैं कदम को उठाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस महिला को छोड़ दे, इससे बाहर आ जा। अब मैंने अपने हाथ को नहीं हिलाया है, महिला मुझे गवाही को दें, मेरे हाथ को कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं था? यदि ये सही है तो आमीन कहें। ये चला गया, क्या ऐसा नहीं है? आप चंगी हो गई हैं। अब वहाँ वो महिला है, अब यहाँ देखिए, अब मैं अपने हाथ को रखता हूँ, आप बस वैसे ही अपना हाथ रखें, आप चंगी हो गई हैं। जाइए, अपने रात्रि का खाना खाएं, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जी हाँ बहन, क्या आप विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती है कि परमेश्वर इस दमे को आपसे दूर कर सकता है और आपको चंगा कर सकता है? तो ठीक है, अपने मार्ग पर जाएं, कहें, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आप पर अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। श्रीमान, आप कैसे हैं? हृदय आपको परेशान कर रहा है, तंत्रिका के कारण एक प्रकार का हृदय गतिरोध है, तेजी से धमधम होता है, दुगने तेजी से धमधम, एक और, दो एक और, एक दूसरी ओर, तो ठीक है श्रीमान, अब ऐसा होना बंद हो गया है, आगे बढ़ें। आपका विश्वास आपको चंगा करता है श्रीमान, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते जाएं तो ठीक है। एक और पेट खराब, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको चंगा करता है? बस जाएं, कहें धन्यवाद प्रभु यीशु, इसका विश्वास करें। यदि वो आपको बता सकता है कि आप कौन हैं, तो निश्चय ही वो आपको चंगा कर सकता है। क्या हो यदि मैं आपसे एक भी शब्द ना कहूं, केवल आप पर हाथ को रख दूं, क्या आप विश्वास करेंगे कि आप चंगे हो गए हैं? वहीं कुर्सी पर बैठे हुए क्या आप अपने मार्ग पर जाएं, कहें आपका धन्यवाद प्रभु, यही है जो आप विश्वास करते हैं। आइए, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उस पीठ की तकलीफ से ठीक किया है? तब वहीं पर बैठे हुए तो ठीक है, आप जा सकते हैं, कहें आपका धन्यवाद प्रभु, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, जाइए और विश्वास करें। श्रीमान, यदि परमेश्वर आपको चंगा न करे तो एक दिन आप अपाहिज हो जाएंगे, इस तरह से इस छड़ी के सहारे इस गठिया रोग के साथ साथ चलेंगे। उसे क्यों नहीं ठीक अभी स्वीकार कर लेते हो? क्या आप ये विश्वास करते हैं? अपने मार्ग पर जाएं और कहें आपका धन्यवाद प्रभु, उस चीज को मसल दें और ठीक अपने मार्ग पर आनंद करते हुए जाएं। यीशु आपके पीठ को चंगा करता है और आपको स्वस्थ करता है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तो ठीक है, अपने मार्ग पर जाएं। यह कहते हुए धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, यहाँ आए महिला, अब आप किससे भयभीत हैं? आपके डरने का कारण जो आपके लिए यह रजनोवर्ती का समय होता है, आप जानती हैं मेरा क्या अर्थ है, एक स्त्री में का बदलाव और हर एक चीज, सांझ को देर तक आप उब जाती हैं, आप अपना काम भी नहीं कर सकती हैं, आप बहुत ही थक जाती हैं, क्या ये ठीक बात नहीं? तो ठीक है, अब ये पूरी तरह ठीक है, आगे बढ़ें, आपका विश्वास आपको चंगा करता है। एक और घबराया हुआ, परंतु आप अपने सारे जीवन घबराए हुए रहे हैं, जब आप युवा थे तो थोड़े घबराए हुए थे, आप यहाँ वहाँ घूमने वाले छोटे से पिटजी थे, परंतु अब लगता है कि किसी ने आपको जकड़ रखा है, आप सारे समय दबाव में रहते हैं, क्या ये ठीक बात है? ऐसा अब और न होगा यदि आप मुझ पर अभी परमेश्वर का नबी होने का विश्वास करेंगे, जाइए और विश्वास करें। कितने और हैं जो अपने सारे हृदय से विश्वास करते हैं? एक दूसरे पर अपने हाथों को रखें। नासरत के यीशु मसीह के नाम में मैं यहाँ प्रत्येक पुरुष और महिला को आदेश देता हूँ कि अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें। यदि परमेश्वर का वचन, यदि उसका भाग सही है, तो फिर ये सारा सही है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर का वचन एक विचारों और हृदयों के इरादों को परखने वाला है। यीशु ने कहा, यदि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर हर एक विश्वासी इस पर आमीन कहे, तो फिर आप विश्वासी हैं। आप उस एक के लिए प्रार्थना करें जिसने आपके, आप उस एक के लिए प्रार्थना करें जिसका हाथ आप पर है, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आइए मिलकर प्रार्थना करें और शत्रु को पराजित करें और हर रोगी व्यक्ति यहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति में चंगा हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता और सारे भले दानों को देने वाले, अपनी आशीषों को इन लोगों के ऊपर भेजें। शैतान, तू लड़ाई को हार चुका है, यीशु मसीह यहाँ पर है, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। मसीह लोगों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हैं, वे विश्वास की प्रार्थना को कर रहे हैं। आपने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उनमें से प्रत्येक जन ने कहा आमीन, वे विश्वास करते हैं। इन्होंने आपकी हृदय की इच्छा पर चिन्ह लगाया है। जब आपने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उन्होंने एक दूसरे पर अपने हाथ रखे हैं। शैतान, तू हार गया, यीशु मसीह के नाम से तू उनमें से बाहर आ जा, इस स्थान को और इस इमारत को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक पुरुष और महिला जो विश्वास करता है कि विश्वासी ने उस पर हाथों को रखा है, विश्वास की प्रार्थना की गई है और आप अपनी बीमारी को भूलने के लिए तैयार हैं, इस बारे में अपने विचार को भूलने के लिए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, ताकि अपने हृदय में लेकर जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपनी चंगाई को स्वीकार करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। अब अपने हाथों को उठाएं और उसको महिमा दें, क्योंकि यह सब समाप्त हो गया।